जी उमेर साहब, वी आर लाइव अगेन। देखिए, सीरीज तो हमारी खत्म होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड की, उस पर हमने बात भी कर ली पिछले एपिसोड में कि क्या खोया क्या पाया, बोथ मतलब पाकिस्तान ने भी और इंग्लैंड ने भी। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में कि भाई स्क्वाड में कोई तब्दीली होगी नहीं होगी, क्या होगा भाई, सारे कंसर्नड हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर का आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है बैटिंग में। कल जी इंटरव्यू दिया है मोहम्मद वसीम साहब, जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं जियो सुपर के ऊपर रेहान भाई वगैरह के साथ। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है उस इंटरव्यू के बारे में, और फिर बारी बारी मैंने पॉइंटर्स नोट डाउन किए हुए तो मैं आपसे सवाल आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या इम्प्रेशन है पहला?
यार बिल्कुल, जब मैंने देखना स्टार्ट किया इंटरव्यू, तो शुरू में तो मुझे लगा कि जो मोहम्मद वसीम है वो सही आंसर नहीं करेंगे, वेग आंसर करेंगे, जिस तरह पहले जो मैनेजमेंट करती रही है उस तरह के आंसर्स करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर्स किए, कुछ काफ़ी अच्छे आंसर्स थे, और कुछ जो उन्होंने बातें की, जो उनसे रेहान भाई ने सवाल किए, जो जो वहाँ पे होस्ट था उसने सवाल किए, उस पर उन्होंने हालांकि टेक्निकल आंसर देना चाहिए था, वहाँ पे टेक्निकल आंसर नहीं दिया, वहाँ पे बस उनको एक तरह से चुप करा दिया, ऐसा जवाब दिया। तो इस मतलब अगर आप ओवरऑल पूछें तो इंटरव्यू ठीक था, अच्छा था, काफ़ी चीज़ें पता चली। जिस तरह हम बात कर रहे थे, स्क्वाड के ऊपर बातें होती थी, हमसे काफ़ी लोग पूछते थे स्क्वाड बताएं, तो अब मेरे ख्याल में वसीम की वो वाली जो उनका जो इंटरव्यू सुनने के बाद हम लोग 85% इवन 90% तक हम कह सकते हैं कि स्क्वाड क्या होगा टीम का, और जो पाकिस्तान का माइंड सेट है, जो टीम का माइंड सेट है वो क्या होगा। तो आप बताएं, आप क्या सोचते हैं जो मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में, क्या तासुरात है?
नहीं बिल्कुल, जिस तरह एक सरफराज अहमद ने जवाब दिया था ना विराट कोहली का वर्ल्ड कप में, विराट कोहली ने सारा एक्सप्लेन कर दिया था, तो सरफराज से सवाल हुआ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सरफराज ने कहा सेम मेरा भी सेम है आपका जवाब। बस उसमें ये है कि जो मुझे एक चीज लग रही है स्क्वाड में तब्दीली की, वो मोहम्मद वसीम ने ये बात की थी कि कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कुछ की इंजरी कम लेवल की है, कुछ की इंजरी ज्यादा लेवल की है, तो अगर चेंजेस होंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था सिर्फ इंजरी की वजह से चेंजेस हो सकते हैं, बाकी स्क्वाड में कोई आपको चेंज करने की कोई वो नजर नहीं आ रही, कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी शोएब मलिक आ सकते हैं, इमाद वसीम आ सकते हैं, तो वो वाली स्टोरी तो काफी हद तक क्लियर हो गई है, उसका उस मुतल्लिक कोई भी मूड नहीं है। लेकिन अच्छा, सबसे जो मेरा आपसे की टेक अवेज में जो पहला पॉइंटर था वो ये था कि मोहम्मद वसीम साहब कहते हैं कि मेरी टीम सिलेक्शन की फिलॉसफी ये थी कि बाबर और रिजवान के अराउंड हमने टीम बनानी है, तो उनका जो टेम्पलेट है खेलने का और जिस मिजाज से वो दोनों खेलते हैं, तो जो प्लेयर्स बाकी सेलेक्ट हुए हैं सो कॉल्ड हिटर्स, वो बाबर और रिजवान को देख के सिलेक्ट किए गए, तो क्या ऐसी टीम सिलेक्शन होनी चाहिए सिर्फ दो प्लेयर्स की बेस के ऊपर?
यार यूं नहीं होना चाहिए बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने जब ये बात की तो काफी अजीब लगा मुझे भी कि भाई आप देखें पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है इस टाइम, सही है, और उसमें से अगर प्लेइंग 11 जा रही है और उसमें से भी आप सिर्फ दो प्लेयर्स पे रिलाई कर रहे हो, सही है, आप बोल रहे हो कि सिर्फ यार वही हमारे हाई विकेट्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये काफी ज्यादती है बाकी प्लेयर्स के साथ, क्योंकि वो भी एक स्ट्रगल करके ऊपर आए, और मेरे ख्याल में इस तरह की अगर बातें करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपकी जो टीम होनी चाहिए वो आपके प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, वो आपकी स्ट्रेटजीज पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब कि जो रन टाइम पे जरूरत पड़ सकती है, मतलब कहीं पे आपके फेसेस नहीं चलते, हमने देखा पिछले मैचेस में फेसेस नहीं चले, आपका मिडल ऑर्डर कोलैप्स, तो मेरे ख्याल में आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी आपकी 360 ओवरव्यू देना चाहिए आपकी टीम का, तो ये काफी उनका गलत पॉइंट था। तो मैं तो इस पे ये बोलूंगा
यार, मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग ये कमेंट था कि आप खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हो कि हमने ये पूरी टीम बनाई है बाबर और रिजवान के गिर्द, तो अगर बाबर और रिजवान ही नहीं चलते तो मतलब आप फिर गए, आपका पूरी टीम सिलेक्शन क्या, आपकी पूरी टीम की वो डायनामिक्स ही हिल गए ना सारे, तो इस तरीके से तो नहीं समझ आती कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और दो प्लेयर्स के अराउंड आप अपनी टीम बना रहे हो, तो बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर सर ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे वो ये कहते हैं कि भाई डेटा एनालिसिस हर टाइम के ऊपर ठीक नहीं होता।
यार
एग्जाम्पल मैं अगर याद करा दूं व्यूअर्स को कि सवाल ये हुआ था कि जी राजापक्सा के अगेंस्ट मोहम्मद नवाज को नहीं डाला गया क्योंकि इवन दो कि राजापक्सा जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल करता है, तो क्लियरली डेटा ये इंडिकेट करता है, और हम पहले भी ये बात पिछले एक एपिसोड में कर चुके हुए हैं। वही बात रेहान भाई ने पूछी उनसे और उन्होंने कहा कि जी बस हर टाइम के ऊपर डेटा ठीक नहीं होता। ये क्या बात
यार, ये बड़ी अजीब बात है। मतलब कि देखें हम लोग अगर आजकल की जो कि मतलब आजकल देखें एक टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, और हर कोई डेटा के बारे में बातें कर रहा है, इवन स्ट्रेटजीज लोग उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। आप सारे कंट्रीज की एग्जांपल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की ले लें, साउथ अफ्रीका की ले लें, इवन न्यूजीलैंड की ले लें, इंग्लैंड की ले लें, इंडिया की ले लें, सबकी प्रॉपर टीम है एक डेटा एनालिसिस वगैरह की, एनालिसिस करते हैं चीजों पे। तो मेरे ख्याल में इस तरह का अगर वो जवाब देंगे कि डेटा की जरूरत नहीं है, तो या तो वो टेक्नोलॉजी से, या तो वो जो मतलब जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर है, वो ही पुरानी वाली चीजें लेके चल रहे हैं।
अच्छा, हालांकि
तो जवाब बनता नहीं है।
ये खुद लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मशहूर थे कि ये सारे स्टैट्स और डेटा ये खुद दिखाते थे जब शुरू में ही आए थे ना एज अ चीफ सेलेक्टर, तो इनको सबने कहना शुरू कर दिया ये लैपटॉप सेलेक्टर है, लैपटॉप सेलेक्टर है, कि जी सिर्फ स्टैट्स देख के ये टीम बना लेते हैं। तो अब ये खुद इनके मुंह से ये जवाब सुनना ऐसे लग रहा था कि उनको पता है कि वो गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिफेंडिंग बस वो जवाब दे गए कि भाई हर टाइम के ऊपर डेटा ठीक नहीं होता, कैप्टन को उस टाइम के ऊपर बेस्ड ऑन द मतलब जो भी मैच सिनेरियो चल रहा है वो डिसीजन लेता है, कभी पे ऑफ करता है कभी नहीं करता। खैर उनका ओपिनियन है, लेकिन उनके जवाब की कोई उस तरीके से समझ नहीं आई। अच्छा सर,
नहीं उनके जवाब पे रेहान उल हक जो भाई हैं उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से काउंटर किया कि आप ये किस तरह बात कर रहे हैं ना, मतलब कि अगर एक प्लेयर है जो पीछे 3 सेंचुरीज मार के आया उसके बारे में आप चौथे मैच पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपका डेटा ही बताएगा ना कि भाई ये इस तरह खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा काउंटर करने की कोशिश की थी इस बात को, लेकिन वो शायद उनका काउंटर फेल हो गया और रेहान ने बड़े अच्छे वो रेहान मैंने काफी अच्छे तरीके से उनसे सवाल किए, इवन होस्ट बीच में ऐसे कुछ आ रहे थे मामला, अगर आपने भी नोटिस किया हो कि रेहान उल काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, मतलब कि जो एक आम बंदे का सवाल है वो वाले सवाल कर रहे थे रेहान भाई, लेकिन आगे से होस्ट आके फिर वो होता नहीं कि थोड़ा सा वो कूल डाउन करना,
ठंडा करो ठंडा करो
ठंडा करो ठंडा करो, तो उन्होंने वसीम को मतलब है ना
काफी गल वध ना जाए हैं मुख्तारिया, वो वाली बात है। अच्छा एक जो ये तो
अगली बार आए ना
एक तो मैंने जो है नेगेटिव तो दो पॉइंट्स मैंने अभी कर दिए, एक जो अच्छी चीज मुझे लगी, अच्छी कह लो या बुरी वो तो व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे अच्छी लगी कि मोहम्मद वसीम साहब ने क्लियरली ये अपना शो किया कि वो बहुत नाखुश थे जिस तरीके से पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर खेला है, और उन्होंने इस हद तक भी बात कर दी कि यार अगर आपने इसी तर्ज की क्रिकेट खेलनी है खासतौर पर जिस तरह लास्ट T20 में खेला है, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर तो और प्लेयर भी थे जो इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपको तो सिलेक्ट ही डिफरेंट मतलब स्कीम ऑफ द थिंग्स थी, डिफरेंट स्ट्रेटजी के तौर पे किया था कि आप हिट आउट करोगे एग्रेसिव खेलोगे, तो वो तो बड़े नाखुश नजर आए, क्या कहते हो आप?
हाँ यार बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ये उन्होंने बिल्कुल सही बात की, जब सातवें मैच की बात कर रहे थे ना वो कि भाई जब आउट हुए तो स्कोर इतना ज्यादा है, हालांकि ये वाली बात पे सवाल किया था पहले रेहान ने ना कि भाई आपके बाबर आजम आउट हो गए, आपका रिजवान आउट हो गया, तो फिर उसके बाद स्कोर आपने 200 चेस करना है, लेकिन आपके शान मसूद इफ्तिखार और खुशदिल जो है बड़ा आराम आराम से खेल रहे, तो ये वाली बात पे उन्होंने बोला था कि भाई ये वाली चीज काफी अनसेटिस्फैक्ट्री है कि हम लोगों ने इन प्लेयर्स को रखा ही वो वाले रोल के लिए कि ये आके कि ये लोग आके पावर हिटिंग करें, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि यार ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो शदाब की तरह इस बात को एक्सेप्ट करें कि यार मतलब कि थोड़ी सी हमारे एंड पे भी गलती है, और ये वाली चीज को अच्छी बात है कि एक वो इन्होंने नोटिस किया है, और हो सकता है शायद ये वो खुशदिल से भी बात की जाए, शान मसूद से भी बात की जाए, मेरे ख्याल में शान मसूद से अगर पावर हिटिंग वाले रोल की अगर ये एक्सपेक्टेशन रख रहे थे तो ये थोड़ी गलत है, क्योंकि आपको भी पता है मतलब कि शान मसूद काफी टेक्निकल है और वो आराम आराम से अपनी अपनी इनिंग को बिल्ड करता है, तो ये मेरा पॉइंट, ये मैं इस पे बोलूंगा
बिल्कुल। चलो दो कॉमेंट्स आ गए वो लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्रिकेट फीवर भाई हमारे सही दोस्त हैं ये तो इंस्टाग्राम वाले हैं, ये सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम।
आपको हमने आपको कल बड़ा मिस किया क्रिकेट फेवर, कल बड़ी हमारी डिबेट भी चल रही थी
कल आप नजर नहीं आए। अच्छा कैसर भाई कल थे, कैसर भाई का सवाल आज भी वही है जो कल था कि अब स्क्वाड होगा चेंज क्या? भाई स्क्वाड नहीं हो रहा चेंज, कल वही हम बता रहे थे, आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, कि मोहम्मद वसीम साहब ने कहा है कि स्क्वाड में सिर्फ वही तब्दीली होगी जो इंजरी की वजह से अगर होगी, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल शाहीन इंजर्ड है, फखर इंजर्ड है, या अब शादाब की हैमस्ट्रिंग इंजरी आ गई है, नसीम को कोविड की वजह से मसाइल हो गए हैं, तो अगर इनमें से कोई इंजरी का शिकार रहता है तो वो रिप्लेस होगा, अदरवाइज कोई उन्होंने मतलब इंडिकेशन नहीं दी एटलीस्ट कि कोई होगा। खैर ये इंडिकेशन उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में भी नहीं दी थी, लेकिन
बिल्कुल
एंड टाइम के ऊपर
अच्छा
25% स्क्वाड चेंज हो गया था।
अच्छा बिल्कुल आपको याद होगा जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो ये बड़ा एक वो सार्केस्टिक वे में भी ना उन्होंने बोला था, रियान भाई ने बोला था, पता नहीं होस्ट ने बोला था, कि आप मुझे बताएं स्क्वाड चेंज हो सकेगा या वो एट द वो कि वो लास्ट में आके 6 प्लेयर आप एकदम चेंज कर देंगे जैसे लास्ट में वर्ल्ड कप पे किया था। इस बात पे वो बड़े से ना चुप हो गए थे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं।
हाँ ये क्रिकेट फीवर साहब कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग स्टार्ट कर दी है फुल फ्लो में नेट्स पे, ये हमने भी सुना है। अब देखते यार ये है कि ये मैच फिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अगर ये 15 को स्क्वाड ज्वाइन करते हैं, 23 को मैच है, बीच में दरम्यान में सिर्फ 2 प्रैक्टिस गेम्स होंगी, तो क्या पाकिस्तान इनको रिस्क करेगा इतना जल्दी लाने में। तो बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा
रिपोर्टेडली
है
आप ठीक कह रहे हो।
जलाल साहब, बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि हमारी कि मुझे याद है कि जब हम लोग अपनी टीम बना रहे थे एशिया कप की, उस पे आप कह रहे थे कि भाई शादाब को सेकंड डाउन लाना चाहिए, उसको लाना चाहिए सेकंड डाउन लाना चाहिए, ऐसे ही था ना
बिल्कुल
आपके
ऐसे ही।
फर्स्ट डाउन के बाद सेकंड डाउन। तो आज जब मोहम्मद वसीम से पूछा गया कि मिडल ऑर्डर जो है हमारा वहां पे काफी ज्यादा क्राइसिस है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स में खराबी है या इनके पास टेक्निक नहीं है, साइकोलॉजिकल मसला है? तो उसमें मोहम्मद वसीम ने बोला कि नहीं, मैं समझता हूँ कि नवाज को ऊपर आना चाहिए, शादाब को ऊपर आना चाहिए। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है?
बिल्कुल
हालांकि मैंने यहाँ
देखो
पे
हमने
मैंने ये
अपने
खबर भी सुनी थी, बस मैं एक और बात ऐड करता हूँ इसमें, कि यहाँ पे एक और खबर सुनी थी कि जब 7वां मैच हुआ था 70-20, वहां पे शादाब का एक्सपेक्टेड था 1 डाउन आना, मतलब कि ये मैंने 2-3 सोर्सेस से ये खबर सुनी है। तो आप क्या कहते हैं इस बात पे,
देखो
ये
हमने तो
अच्छी बात है
अपना
क्या?
टाइटल और थंबनेल में भी ये लिखा है कि जी क्या बाबर और मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं वो सेम पेज के ऊपर हैं या उनके अंदर इख्तलाफ है। तो ये जो आपने पॉइंट रेज किया और जिस तरह का जवाब मोहम्मद वसीम ने दिया, उससे तो क्लियरली ये लगता है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर और चीफ सेलेक्टर बिल्कुल सेम पेज पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम भी ये बात कर रहे थे और काफी पाकिस्तान में लोग ये बात कर रहे थे कि शादाब और नवाज टोटल वेस्ट हो रहे हैं बैटिंग में अगर आप उनको नीचे कर रहे हो। और कहीं ना कहीं हम इंडिया वाला मैच, रेहान भाई ने भी बार बार इंटरव्यू में याद करवाया कि आपने इंडिया वाले मैच में नवाज को ऊपर भेजा, अफगानिस्तान वाले मैच में शादाब को ऊपर भेजा, उसके बाद हमें वो देखने को नहीं मिला। तो मोहम्मद वसीम टू माय सरप्राइज वो भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के थे कि वो कहते हैं यार मेरा भी ये ख्याल है कि 4 पे शादाब और 5 में नवाज को बैटिंग करनी चाहिए, और शायद उन्होंने टीम की सिलेक्शन भी इसी बेस पे की थी, ये कहते हुए ये सोचते हुए कि शायद हम शादाब और नवाज से ऊपर बैटिंग कराएंगे और इफ्तिखार वगैरह नीचे बैटिंग करेंगे, एज अ फिनिशर रोल उनका होगा, एज अ हिटिंग रोल होगा। अब टीम तो बिल्कुल ही डिफरेंट चल रही है, वो तो शादाब और नवाज को तो बिल्कुल ही नीचे उन्होंने रखा हुआ है, तो कोई सेंस समझ नहीं आई कि आपका चीफ सेलेक्टर कुछ और कह रहा है और आप खिला कुछ और रहे हो, तो जो टोटल इख्तलाफ है
बिल्कुल
भाई, बिल्कुल
हाँ,
इख्तलाफ है।
नहीं सही इख्तलाफ है बिल्कुल। चले ये अच्छी बात है कि मोहम्मद वसीम भी यही बातें करें कि शादाब को ऊपर लाना चाहिए, नवाज को ऊपर लाना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक और बात याद आई जलाल, वो रियान भाई कहते हैं कि भाई आपके पास तो इतना बड़ा एज है इस टाइम टीम में, कहते हैं कि आपकी टीम में 2 स्पिनर है, ठीक है, और वही 2 स्पिनर आप उनको वहां भी यूटिलाइज कर सकते हो बैटिंग पे, मतलब के ना। तो
बिल्कुल
कहते हैं कि आपके पास तो 2 पोजीशन खाली है, कहते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा लैक आ रहा है आपकी टीम में। तो उस बात पे खैर उन्होंने थोड़ा मजाक में ले गए, तो कहते हैं नहीं यार आप तो जज्बाती हो रहे हैं, हम परफॉर्मेंस है हमारी 80%, इस तरह की वो जो बातें करते हैं, 80% हमारा वो विनिंग रिकॉर्ड है ये वो।
अच्छा, विकास साहब का मैसेज आया है, थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं पाकिस्तान में 2 तेरा 2 मेरा, जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ भी वही बाबर कैप्टन रहता है, मतलब इनका मतलब है कि जिम्बाब्वे वाली सीरीज में भी चेंजेस नहीं करते। मुझे तो लगता है बाबर तो बोर्ड का दामाद है। मिस नहीं कर सकते कोई भी मैच। हाँ देखो यार ये बात तो जेन्युइन है कि बाबर टीम में चेंजेस नहीं करता और छोटी सीरीज भी उस तरीके से मिस नहीं करता जैसे हमने देखा है। रोहित शर्मा ने चेंजेस किए और हमने उनको अप्रिशिएट भी किया, इवन दो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देते हैं, शायद उतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी टीम को ट्राई आउट करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करते हैं और प्लेयर्स को चांस देते हैं, जिस तरह अभी आज वाले मैच में भी उन्होंने चांस दिया बाकी टीम को, इवन दो इंडिया हार गया लेकिन इंडिया को काफ़ी पॉजिटिव्स मिले, उस पर हम बाद में डिस्कस भी करते हैं। तो मेरे साथ बात तो ठीक है कि बाबर भाई पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो जायज़ भी है।
बिल्कुल जायज है यार ये बात। हाँ वही बात है कि वही ये जो इनकी कैप्टेंसी है वो थोड़ी खराब चल रही है और मुझे डर है इस वजह से शायद उनकी बैटिंग ना इफेक्ट हो जाए, क्योंकि उनके उनका एक नाम बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो देखते क्या बनता है। बाकी इन्होंने एक और बात की थी जलाल, ये मोहम्मद वसीम ने इंटरव्यू पे, कि फोर सीमर्स होने चाहिए टीम में, उसके
बिल्कुल
बारे में क्या ख्याल है?
यार वही तो समझ नहीं आ रही, इख्तलाफ पे इख्तलाफ है, हमें तो लग रहा है मोहम्मद वसीम भाई हमारी कैंप में है। ठीक
हमारी
है,
वीडियोस देख
नहीं वो हमारी
रहे
कैंप में, देखो उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग बड़ी मैच कर रही है, और अगर आपका
सेम पेज पे
चीफ
आ रही है।
चीफ सेलेक्टर ये कह रहा है कि पहले उन्होंने कहा कि जी शदाब और नवाज ऊपर बैटिंग करें, फिर वो कह रहे हैं कि मोहम्मद वसीम, मतलब डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन उन्होंने कहा फोर सीमर के साथ आपको जाना चाहिए क्योंकि शदाब और नवाज आपको बैटिंग में एक एज दे देते हैं क्योंकि वो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, पूरे बैट्समैन उन्होंने कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो शदाब और नवाज आपको हेल्प आउट कर देते हैं बैटिंग में कि आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन हम वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर को कि बाबर वसीम को हमेशा फोर्थ सीमर की बजाय एज अ थर्ड सीमर खिलाता है, इवन
थर्ड
वो
सीमर
आमिर
खिलाता
जमाल
है।
को भी जो उसने खिलाया मैच में वो उसको एज अ थर्ड सीमर खिला गया और वसीम को सेकंड सीमर खिला गया, तो कुछ समझ नहीं आ
अच्छा
रही
वैसे
क्या हो
देखे,
रहा है।
हाँ इस चीज की सेंस तो बनती नहीं है जिला जी। देखे आपकी टीम में, अब देखे वही जो मैच था जिसमें आमिर जमाल खेला था, वो वहां पे किस पोजीशन पे आया था? वो वहां पे आई थिंक वो 9th नंबर पे आया था
नाइन्थ या
और
टेंथ पे,
वसीम 10th नंबर
हाँ
पे आया था, तो
हाँ
कोई सेंस नहीं बनाती यार। या तो आप ऊपर वाले प्लेयर्स को इम्प्रूवमेंट लाओ, वहां पे रूम रखो। तो ये बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है
देखो
पाकिस्तान
आज
क्रिकेट
वाले
का।
मैच में रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को ऊपर भेज दिया, ठीक है क्यों भेजा, है तो वो एज अ फिनिशर रोल, लेकिन क्योंकि उन्होंने बॉल्स कम खेली हुई थी तो उन्होंने कहा चलो चांस मिल जाए उनको वो टच में वापस आ जाए, वही हमारा इख्तलाफ है। आपने आमिर जमाल को खिलाया फिर आखिरी मैच में आपने बायर कर दिया क्योंकि आपको डर लग गया कि हम सीरीज ना हार जाएं, वो आप फिर भी हार गए, लेकिन क्या हुआ कि आपको आमिर जमाल की बैटिंग देखने को उस तरीके से नहीं मिली, आपको ये नहीं पता आमिर जमाल किस केपेबल है, आपको मोहम्मद वसीम के पास बॉल्स नहीं है अंडर द बेल्ट कि वो डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट हुआ हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये क्रूशल वर्ल्ड कप के मैच में आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्म कर देंगे, वो तो मौजे की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद हो जाए, अरे इस तरीके से टीमें तो नहीं
बिल्कुल
बिल्ड होती,
ऐसे
तो बड़ी सरप्राइजिंग है भाई
बिल्कुल
मुझे तो, टोटली ना अहलियत ऊपर से लेके नीचे तक नजर आ रही है हमारी टीम मैनेजमेंट में और थिंक टैंक में।
अच्छा एक और बात उन्होंने की जलाल, उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान टीम जीतती है अच्छा लगता है ये वो ना, तो मोहम्मद वसीम कहते हैं हाँ जीतती है, हमारी यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है ना, पाकिस्तान टीम की बैटिंग तो है ही नहीं स्ट्रेंथ। तो ये उन्होंने जिस तरह बोला मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, शायद आपको ना लगे शायद बाकियों को ना लगे। मुझे लगा कि यार देखे बॉलर्स तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना, लेकिन साथ साथ बैट्समैन का भी रोल बनता है। मतलब उन्होंने जिस तरह वो फ्रेंकली बोला ना कि यार देखे ना जो बॉलर्स जिता रहे हैं तो बॉलर्स भी तो पाकिस्तानी है, तो इस तरह की बातें एज ए सिलेक्टर नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। वो एज ए वो बैट्समैन भी रखे। अब
बिल्कुल
बैट्समैन
यार
अगर जहां पे
देखो
110 120 जहां पे 110 120 रन हो, वहां पे आपकी बॉलिंग कितना बचा देगी आपको?
यार, साल पहले तो बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है साल पहले शादाब की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, सही है साल पहले नवाज आपकी प्लेइंग 11 में होता नहीं था, ठीक है आपके फास्ट बॉलर इस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे मां सिवाय शाहीन के, हारिस भी एक्सपेंसिव होता था उस टाइम के ऊपर, अगर आपको एक साल पहले चले जाओ वर्ल्ड कप से पहले की बात कर रहा हूं, तो वर्ल्ड कप में हम गए थे ये सोच के कि बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग था हफीज और शोएब मलिक की वजह से,
मलिक
ठीक है तो हमें अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस था, सडनली अब आप कह रहे हो कि बैटिंग तो हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं थी और अब बॉलिंग स्ट्रेंथ है क्योंकि अब आपको पेसेस सडनली मिल गए हैं, शादाब ग्रूव में आ गए, नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वही बात है जहां कुछ फिक्स करना होता है वहां फिक्स कर देते हैं। इससे मेरा एक और सवाल है, सवाल होता है कि जी बैकअप विकेट कीपर पर, हमने पहले भी बात की कि आपने एक तो बैकअप विकेट कीपर रिजर्व में डाला हुआ है और अगर खुदा ना खास्ता रिजवान को कुछ होता है तो आप जब तक वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा, रिजर्व वाला कीपर नहीं आ सकता आगे, ठीक है, क्योंकि वो मेन 15 के स्क्वाड में नहीं है। एक तो उसके ऊपर उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। दूसरा बात हुई कि वाई हारिस, वाई नॉट सरफराज, उस पे जो जवाब दिया उसके बारे में बताओ जरा।
यार वो जवाब उसका बड़ा अजीब सा था। उनसे सवाल यही किया गया कि भाई आपने सरफराज को क्यों नहीं रखा हारिस को, तो कहते हैं भाई ये एक्स कैप्टन रह चुके हैं टीम के, तो अगर ये बेंच पे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ये। तो मेरे ख्याल में बड़ा अजीब सा जवाब है कि एक्स प्लेयर है बेंच पे बैठे।
और उन्होंने ये भी कहा ना कि ओपनर हारिस जो है वो ओपन करेगा या नीचे बैटिंग करेगा, विकेट कीपर ऊपर या नीचे एंड में बैटिंग करता है, तो उसका बताओ वो क्या।
हाँ बिल्कुल यही उन्होंने बोला ना कि जो कीपर होता है वो या तो टॉप ऑर्डर खेलेगा, या तो आपका ओपन करेगा, या वो नीचे आएगा, मतलब कि बीच में आ ही नहीं सकता कीपर। मतलब हाँ। ये पता नहीं कौन सा रूल है, मेरे ख्याल में या तो 50 ओवरों की गेम है या हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हाँ। तो वहां पे इस तरह की स्ट्रेटेजीज बंदा बनाए तो अच्छा भी लगे।
अच्छा उस पे बड़ा अच्छा उन्होंने काउंटर भी किया, उन्होंने बोला कि यार आपके पास तो पहले ही ओपनर्स की भरमार है, आपके स्क्वाड में फखर भी होगा, शायद शान मसूद भी होगा, ठीक है, तो उनमें से भी कोई ओपन कर सकता है अगर खुदा ना खास्ता रिजवान को कुछ होता है। मसला तो आपके मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, और मिडिल ऑर्डर में सरफराज तो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता था, तो उस पर कोई उनके पास जवाब नहीं था। वो एकदम से फंस गए क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा सवाल, और कोई उनसे कोई एक्सप्लेनेशन खातिर खा नहीं दी गई। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हैज मिस्ड अ ट्रिक कि शायद वो सरफराज को मिडिल ऑर्डर में एज अ बैकअप ना भी खिलाओ। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि जी वो कप्तान रहा है तो आप उसको बेंच पे नहीं बिठा सकते, मतलब ये अजीब सा कोई आर्गुमेंट है, लेकिन आप उसको क्लियरली खिला सकते थे। फिर इमाद वसीम पे एक्सप्लेनेशन, क्या आप बाइंग करते हो उसको?
वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी यार, एक्सप्लेनेशन कहाँ दी उन्होंने, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। हालांकि मैंने वो जब वीडियो देखा ना, मैंने पॉज की, मैंने कहा हो सकते शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई बात का जवाब भी सही तरह नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं यार ये तो आप फिर वही बात करने लगता, आपको मेरी बातें नहीं समझ आ रही। हाँ। ये तो वही आपके नवाज की रिप्लेसमेंट है, इस तरह हाई वैल्यू विकेट एक्सेट्रा, इस तरह की बातें। तो उन्होंने कोई इस तरह कोई अच्छा आंसर नहीं किया। हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि यार सीपीएल में परफॉर्म कर रहा है, इस तरह करके बातें की, लेकिन वही बात है कि जो इनको प्लेयर इन्होंने नहीं लाना वो नहीं लाना।
अच्छा इसमें इमाद का उन्होंने सवाल भी किया था एज अ बैकअप, ये नहीं बोला था कि नवाज एज अ रिप्लेसमेंट, सॉरी इमाद एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नवाज, ठीक है। उन्होंने कहा था जो मुझे समझ आई कि उस्मान कादिर की जगह पे एज अ बैकअप स्पिनर जो है आप इमाद को रख सकते हो, ठीक है, जो आपको बैटिंग में भी देता है और आपको बॉलिंग में भी देता है, और हमने वो सीपीएल में देख लिया उसकी परफॉर्मेंस। कोई जवाब नहीं था उनके पास उसका प्रॉपर, उन्होंने बस उसको नवाज पे रखा कि जी देखें हम नवाज को इमाद की जगह पे लाए थे और नवाज की परफॉर्मेंस आपके सामने, ठीक है। तो भाई कुछ समझ नहीं आई इसकी
यार। अच्छा जलाल मैं आपको बताऊं मुझे क्या लगता है, देखें मुझे ये लग रहा है ना जो इनकी स्ट्रेटजी, जो मैनेजमेंट, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है मैं सही हूँ, सही है। लेकिन बात ये कि एशिया कप से पहले जो माइंडसेट था वो माइंडसेट ये था कि यार पाकिस्तान के फेसर्स ही खेलेंगे हमेशा, बाबर खेलेगा या रिजवान खेलेगा, ठीक है। अब वहां पे वो लोग उस टाइम काफी बातें कर रहे थे, ये सारी ट्रेंड वहीं से बनाते हुए आए कि यार हमने पावर हिटर ही रखने, सब वो मीडिया पे आके इसी तरह की बातें करते थे कि सिर्फ हमारा बाबर है और रिजवान है। एशिया कप के बाद फेलियर आया, ठीक है, हमारे ये हमारे टॉप ऑर्डर का, ठीक है, उसके बाद भी वो रिलेक्टेंट रहे। अब इंग्लैंड के बाद भी आप देख रहे हैं बाबर रिजवान के बाद भी वो यहाँ पर रिलेक्टेंट रहे इस बात। तो मुझे ये लग रहा है कि काफी स्टबर्न हो गए अपने वो वाले विजन पे कि यार हमारे सिर्फ बाबर और रिजवान होंगे और नीचे वाले पावर हिटर होंगे, मतलब कि ये उस पर कोई चेंज नहीं लाना चाह रहे।
बिल्कुल। अच्छा क्रिकेट फीवर भाई कह रहे हैं कि दे शुड हैव ट्राइड नवाज एंड शदाब इन टॉप ऑर्डर बैटिंग, बट ऑन द अदर हैंड यू वॉन्ट बी एबल टू पुट ब्लेम ऑन दीज टू इन केस ऑफ फेलियर बिकॉज दे आरंट प्रॉपर टेक्निकली साउंड बैट्समैन। यार अब क्रिकेट फीवर भाई आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि खुशदिल शाह या आसिफ, इफ्तिखार को फिर आप कह सकते हो थोड़ी सी टेक्निक उसकी है, लेकिन क्या ये टेक्निकली साउंड बैटर्स हैं कि ये क्वालिटी स्पिनर को या क्वालिटी पेसर को खेल सकते हैं? तो आपने ये कंपैरिजन करना है कि खुशदिल और आसिफ में से बेटर इक्विप्ड प्लेयर कौन से हैं? मुझे तो क्लियरली नवाज और शदाब टेक्निकली इन दोनों से बेहतर लगते हैं, ठीक है, और उन्होंने पीएसएल में भी प्रूफ किया है दोनों ने। शदाब तो पीएसएल में ऊपर आके क्वालिटी पेस और क्वालिटी स्पिन को भी खेला हुआ है, और स्पिन के अगेंस्ट शदाब का पाकिस्तान में टॉप 3 के अंदर स्ट्राइक रेट आता है। तो स्पिन के अगेंस्ट ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे लिए तो क्लियर आंसर है
और
उसका।
वैसे भी हाँ हाँ नहीं, वैसे भी आपका सेकंड डाउन थर्ड डाउन जो होता है वो 7वें ओवर के बाद 14वें ओवर तक एक्सपेक्टेड होता है, तो वहां पे स्पिनर ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और जैसा खुशदिल है वो तो उस तरह नहीं खेल सकता स्पिनर को, तो मेरे
बिल्कुल।
ख्याल में इसी तरह या नवाज ऊपर आए या शादाब ऊपर आए, कोई
और
ऐसी
ये भी
चीजें तो
देखो,
करनी
आप
पड़ेगी।
डिपेंडिंग अपॉन मैच सिचुएशन कर सकते हो ना, क्योंकि अब आपने टीम सारी रिजवान और बाबर के गिर्द बनाई है। ठीक है, तो अगर रिजवान और बाबर जल्दी आउट होते हैं तो ऑब्वियसली शान मसूद आपके पीछे खड़ा हुआ है, वो आपको स्टेबिलिटी रोल देता है। लेकिन अगर जिस तरह पिछले मैच में आपको बड़ा टारगेट चेस करना था, तो आपको, आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी स्ट्राइक रेट लो रखो। आज इंडिया ने दिखाया है, इवन दो इंडिया हारा है, लेकिन इंडिया खुश होगा कि एटलीस्ट जो भी प्लेयर आया इंटेंट के साथ खेला और उसने कोशिश की एटलीस्ट के एंड तक। रन रेट के ऊपर वो ठीक थे, विकेट ज्यादा उनकी गिर गई थी, तो ऐसे हारने में मेरा नहीं ख्याल कुछ ज्यादा दुख होता है बंदे को। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जी सरफराज कैन प्ले अ की रोल इन मिडल ऑर्डर, ठीक है, एज वी हैव वेरी फ्यू इन पाकिस्तान नाउ अडेज हु प्ले स्पिन वेरी वेल, एंड सरफराज इज ईजीली वन ऑफ देम। बिल्कुल ठीक बात है, क्या कहते हैं उमेर साहब आप?
बिल्कुल सही बात है, वही बात है, मिडिल ऑर्डर पे अभी हमारा क्राइसिस पे, अगर मलिक भी नहीं है हमारे पास तो सरफराज है, लेकिन वो भी नहीं है जाहिर है क्योंकि पीसीबी उसको नहीं लेके जा रहा, तो अभी बस हम दुआ कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो।
अच्छा,
आवाज
ये
आ
भी
रही है
हमारी
आपको
क्रिकेट का अलमिया हो गया ना, जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि पहले
मेरी?
फखर परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिर हम कह रहे थे कि हैदर को लाओ, फिर हैदर नहीं परफॉर्म किया, फिर हम कह रहे हैं फखर को वापस लाओ। अब सरफराज की अगर आप पास परफॉर्मेंस पे जाओ, तो इनका भी पावर हिटिंग कैपेबिलिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क थे। जब सरफराज कैप्टन थे तो आपने अक्सर देखा हो, याद होगा आपको, कि सरफराज बैटिंग करने ही नहीं आते थे और अपने से ऊपर इमाद वसीम वगैरह को भेज रहे होते थे। ठीक है, तो उस दौर उनके ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए थे कि क्या सरफराज की टीम में जगह भी बनती है कि नहीं बनती। इसी वजह से सरफराज बाहर हुए थे और उनको कप्तानी भी उनकी छुट्टी, क्योंकि वो उनमें वो पावर हिटिंग कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही थी वो, और वो खुद बैटिंग करने आते ही नहीं थे अक्सर क्रूशल मोमेंट्स पर। तो अब ये भी देखना होगा कि बार 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 हमारे पास कोई इतने क्वालिटी रिप्लेसमेंट आ नहीं रही और हम बार बार उन्हीं प्लेयर्स की बात करते हैं, ये भी एक अलमिया है हमारा।
हाँ
आदित्य सिंह कह रहे हैं
नहीं
ज्वाइन मी ब्रो, कहाँ ज्वाइन करें सर, आप ये भी बता दें।
ब्रो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा। उसके अलावा जलाल एक और बात काफी होती थी शोएब मलिक की, आई थिंक वो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया ना, कि शोएब मलिक के बारे में बात होती थी, हमसे पूछते थे, हम कहते थे कि भाई सोशल मीडिया की ट्वीट वगैरह का इम्पैक्ट है, उस तरह की
हाँ
चीजें हैं। तो जब
बिल्कुल,
ये सवाल रेहान भाई ने पूछा उससे, उनसे पूछा, मोहम्मद वसीम से पूछा कि भाई शोएब मलिक टीम में क्यों नहीं है ना, उनका क्या सीन है, वो तो परफॉर्म भी करते हैं ये वो, तो कहते हैं यार ये बड़े देखें हमारी टीम में हाई विकेट्स पहले ही हैं, तो इतनी ज्यादा हाई विकेट्स एक टीम में हो वो भी T20 में, तो वो इतना मेक सेंस नहीं करता। तो आप ये वाली बात से कितना ज्यादा मतलब वो करते हैं एक्स वो
वो कह रहे थे
मानते हैं
हाई
बात?
वैल्यू विकेट्स पहली टीम में बहुत हैं और कितनी ही डालें। अब
हाँ
हाई वैल्यू विकेट से मुराद क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं है एक्सप्लेनेशन की।
देखिए मुझे तो
ठीक है,
हाई वैल्यू विकेट्स में तो मुझे तो सिर्फ बाबर और रिजवान ही नजर आ रहे हैं जो
नहीं तो
टॉप पे
हाई
दिखते
वैल्यू
हैं।
विकेट्स का क्या मतलब है? या तो आप ये बोलो कि शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, या शोएब मलिक स्पिन नहीं अच्छी खेलते। एक उनके ऊपर आर्गुमेंट यह आ सकता है कि शोएब मलिक शायद बाउंसी विकेट्स के ऊपर वो नहीं खेल सकते। आप आर्गुमेंट अगर ये देखो, दुनिया में T20 क्रिकेट डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब मिला के शोएब मलिक वो बंदा है जो तीसरे नंबर पे आता है हाईएस्ट रन गेटर्स में। पहले में क्रिस गेल है, दूसरे पे पॉलार्ड है, तीसरे पे शोएब मलिक है, चौथे पे विराट कोहली है। ठीक है, आप उस प्लेयर की बात कर रहे हो जिसका T20 फॉर्मेट में शायद लेजेंडरी स्टेटस है, सही है,
सही
दुनिया में
है
वो जाके
सही
खेल
है।
चुका है हर जगह पर और प्रूफ कर चुका हुआ है, कप्तानी कर चुका हुआ है, टूर्नामेंट जीता हुआ है। अब आप उसको इस तरीके से राइट ऑफ करोगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, फिर क्या कह सकते हैं?
हाँ ना यार बिल्कुल ज्यादती है, इस तरह होना नहीं चाहिए। मतलब देखते हैं अभी भी, खैर अब तो मेरे ख्याल में मुश्किल है मलिक का आना, क्योंकि आई थिंक वो वसीम अकरम वाले शो में भी उस पर होस्ट करें जो जिसपे वसीम है वकार है, आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा,
देखा
उस पे
मैंने,
वो होस्ट कर रहे हैं।
देखो जो मुझे लग रहा है ना, इफ्तिखार को सिर्फ जो एज मिल रहा है ना, वो मिल रहा है बॉलिंग से, क्योंकि हमने ऑफ लेट देखा है कि शोएब मलिक ना इतनी बॉलिंग नहीं कर पाते, और इफ्तिखार को आपको लग रहा है कि आप वहां पर 4 ओवर भी इफ्तिखार से अगर जरूरत पड़ी तो निकलवा सकते हो। शोएब मलिक से वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करा रहे, बहुत अरसे से नहीं करा रहे। हफीज से ये कॉन्फिडेंस आपको मिलता था कि चलो यार आपको ओवर्स मिल जाएंगे, सही है? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इफ्तिखार को वो एज मिल गया है शोएब मलिक वाला, लेकिन स्टिल आई वुड से कि खुशदिल की जगह भी शोएब मलिक आ सकते थे, ठीक है? क्योंकि हफीज और मलिक जब एक साथ टीम में खेल सकते हैं तो इफ्तिखार और मलिक क्यों नहीं खेल सकते, ये भी एक आर्गुमेंट बनता है, क्या कहते हैं आप?
यार हाँ ठीक है, बस यार इस जो आपने भी बात की है ना वो ठीक है, मतलब सही है, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जैसे देखे ना बाबर रिजवान आपके जो हैं वो अगर 10-12 ओवर खड़े रहेंगे तो फिर उसके बाद अगर इसी तरह नीचे शान है, इफ्तिखार है, या तो अगर शोएब मलिक इफ्तिखार की जगह है तो फिर तो मैं बोलूंगा यार फिट है सीन। खुशदिल की जगह कोई और बंदा आना चाहिए, कोई मतलब मैं चाहता स्ट्राइकर आए, कोई मतलब ना इंटेंट फिट सा स्ट्राइकर आए जो 150-180 की स्ट्राइक रेट से खेले।
यार वो तो अब आपके पास है ही नहीं ना कोई, लेकिन बात ये है कि खुशदिल दोनों रोल नहीं प्ले कर पा रहा ना। शोएब मलिक ऐसा बैट्समैन है जो हिटिंग भी कर लेता है और वो दरमियान में भी आराम से भी खेल लेता है, तो दोनों गेम है उसके पास। खैर एनीवेज हम बहुत बात कर चुके हैं शोएब मलिक के ऊपर, फिटनेस के मुतालिक भी सवाल हुआ भाई, बहुत सारे लोग कह रहे थे शर्जील खान क्यों नहीं है, शर्जील खान को डालना चाहिए और आजम खान को डालना चाहिए, उस पर उन्होंने काफी अच्छा जवाब दिया, तो क्या उसके बारे में आपका ख्याल है, क्या जवाब दिया उन्होंने?
यार उसके बारे में जवाब अच्छा दिया उन्होंने, ये बोला कि फिटनेस सही कर लें और फिर आ जाए टीम में।
हाँ।
तो फिटनेस मेरे ख्याल में मेन चीज है, ये फिटनेस की बात आपने भी काफी दफा पहले की थी, ये वो मुझे याद है जो लास्ट 2-3 एपिसोड्स में लोग पूछ रहे थे, तो फिटनेस का उनका इशू है और मोहम्मद वसीम कहते भी हैं कि मैंने उनसे बोला भी है कि आप अपनी फिटनेस पे काम करें, अब वो पता नहीं काम पाकिस्तान में भी चला जाओ यहाँ से खेलने के लिए फिटनेस, अगर खाली फिटनेस इशू हो।
नहीं वो उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से कह रहा हूँ शर्जील खान को कि भाई फिट हो जाएं, आप फिट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा खुद एडमिट किया कि मुझे शर्जील खान की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है? रीजन वहां पे आ गई फिटनेस की। फिर उन्होंने ये भी बात की कि मैं अभी भी ओपन हूं कि मैं आजम खान या शर्जील खान को सेलेक्ट कर लूं अगर टीम मैनेजमेंट मुझे ओके की रिपोर्ट दे दे कि भाई ठीक है हम मैनेज कर सकते हैं सो कॉल हल्के फील्डर्स को, क्योंकि इनको आपको छुपाना पड़ेगा फील्डिंग में, शर्जील खान फील्डिंग में माठे हैं, आजम खान उस तरीके से फील्डिंग नहीं कर सकते ड्यू टू हिज फिजिकल, जो भी उनका ओवरवेट वाला सीन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे टीम बता देती है, टीम कहती है हाँ ठीक है हम मैनेज कर लेंगे तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि उधर से अभी तक शायद उस तरह की ओके की रिपोर्ट नहीं है। अच्छा जी, आपके और मेरे दोस्त जीशान साहब कहते हैं कि जी बींग अ कैप्टन हैज टेकन इट्स टोल ऑन बाबर आजम, ही कैन नॉट बैट एज ही यूज टू बिकॉज देर इज सो मच प्रेशर ऑन हिम।
यार यही बात है ना शाणा जी, यही बात है जिला जी, याद है हम लोगों ने यही बातें की है पिछले एपिसोड्स में भी, अभी भी कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम जो है ना वो प्रेशर ले जाएगा और वो फिर परफॉर्म नहीं कर सकेगा और वो चीज उसको ज्यादा खराब करेगी।
यार लग तो रहा है खास तौर पर अगर ऐसे डिसीजन लेगा कि चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं 4th और 5th पे बैट्समैन कोई और खिलाना चाहिए और बैट्समैन कोई और खेल रहे हैं, तो कुछ तो लोग भी क्या थे जालिम है और कुछ हमें भी मरने का शौक है। राबी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम
अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार चले अभी ये जो मोहम्मद वसीम की बातें हुई हैं इससे चले हमें ये आइडिया हो गया है कि जो स्क्वाड है वो कोई चेंज नहीं होने वाला है ना,
नहीं होने वाला,
कोई चेंजिंग नहीं आने वाला
मासवाए क्या उसे कहते हैं इंजरी
मासवाए किसके हाँ नासवाए इंजरी बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद वसीम ने उनकी भी बात की कि हमारे पास स्पिनर्स की बड़ी कमी है और स्पेसिफिक उस्मान कादिर की भी बात की कि वो इंजर्ड है, तो आपको लगता है कि उस्मान कादिर अगर इंजर्ड अभी रहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 7-8 दिन है ना फाइनल स्क्वाड बताने में, तो उस्मान कादिर की जगह कोई आ जाएगा स्पिनर? अब
अच्छा अब आप बड़े अच्छी जगह पे अड़े हो, आप
रिकवरी की कोई खबर नहीं
आई आपके पास, नहीं आवाज आ गई। अच्छा नहीं मुझे आवाज आ गई, आप उस्मान कादिर की बात कर रहे थे। उस्मान कादिर की देखो अब मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो हमारा अभी सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड के साथ, ये कितनी गलत स्केड्यूल की गई है कि आप 4-5 इंजर्ड प्लेयर कैरी कर रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि आपकी फ्लाइट थी सेम नाइट को जिस नाइट पे आपका मैच खत्म हो रहा था, तो क्या पॉइंट है ऐसे प्लेयर्स को टूर पे लेके जाने का जो इंजर्ड है, जो खेल ही नहीं सकते? सही है, उनकी जगह आप उन प्लेयर्स को लेके जा सकते थे जो कम से कम टेस्ट आउट तो कर लेते आप। तो पहले तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आई कि आप इंजर्ड प्लेयर्स को कैसे ले गए हो, और वो लेके जाना मजबूरी थी क्योंकि पहले से फ्लाइट एंड एवरीथिंग वाज अ डन डील। तो यार मैं तो वैसे भी उस्मान कादिर के उस हक में उस तरह नहीं हूं, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, उस्मान कादिर के स्टैट्स मेरे सामने कुछ आए जिसमें अगर हम इंग्लैंड वाले की बात करें ना, पहले चार मैचेस की जिस पे वो खेले थे उस पे उनकी इकोनॉमी 10.41 की थी। सही है, विकेट्स ली थी लेकिन 10.41 की इकोनॉमी थी। और वसीम का भी फिगर बहुत वर्स थे, उन्होंने दो विकेटें ली और 10.9 की उनकी स्ट्राइक रेट थी। ठीक है, शाहनवाज दहानी की अगर हम बात करें तो शाहनवाज दहानी की भी उन्होंने 170 खाया और उनकी इकोनॉमी 12.7 की थी इंग्लैंड वाले टूर में।
वो
देख रहे हैं, और हसनैन जी हसनैन की जो है ना,
चलो बोल,
जी बोले
आप, बोलो कंप्लीट कर लो।
हाँ, हसनैन की जो इकोनॉमी है वो आपकी रही है 10.8 की, और जिसमें से जो शुरू के दो ओवर जो वो कराता है उसमें उसकी इकोनॉमी 6.7 की है। कितना फर्क है।
अब ये आपका डेटा साइंटिस्ट बाहर आ रहा है ना, देखो हम यही तो कह रहे हैं कि ये चीजें जब हमें इधर बैठ के थोड़ा सा हम देखें तो पता लग जाता है कि हसनैन को आपने एंड वाले ओवर्स नहीं कराने। ठीक है, हसनैन को आपने शुरू वाले ओवर्स करवाने हैं और मिडिल में उसको खत्म कर देना है, सो एंड में नहीं कराना। आप क्या कह सकते हैं यार, डेटा एनालिसिस पे तो वो कहते हैं कि हर चीज डिपेंड नहीं करती। अच्छा, राबी साहब कह रहे हैं कि खुशदिल शाह इज बेटर देन आसिफ अली, लुक आसिफ अली स्कोर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है यार, देखो आसिफ अली जिस सिचुएशन पर आता है ना, वो उस सिचुएशन पर मैच पहले ही चला जा चुका होता है, खत्म हो चुका होता है मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान का, तो ये भी आपको थोड़ा अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। आसिफ अली इज लाइक आफरीदी हु कैन नॉट बॉल, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आसिफ अली जिस दिन चल गया वो मैच विनर है, और मोस्टली नहीं चलेगा वो। अच्छा, विकास साहब कुछ कह रहे हैं, उमर कमेंट पढ़ सकते हैं?
विकास साहब कह रहे हैं, जी जी पढ़ सकते हैं। सर, पाकिस्तान मीडिया मैच हारने के बाद गाली क्यों देते हैं? बाबर से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकता है, बस
बुरा कहते हैं इन्हें, पता नहीं
बुरा कहते हैं उन्हें, पता नहीं हार
डर के आवे जीत है। अच्छा, हार डर के आगे जीत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ये बात ठीक है यार आपकी, कि हमारा YouTube चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये था क्योंकि हमें खुद फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि जो हम मीडिया वालों के क्वेश्चंस सुनते हैं या पाकिस्तान की जो कवरेज है ओवरऑल क्रिकेट की, तो वो हमें खुद एज फैंस वो अजीब सा लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, और पूछने वाले सवाल पूछे नहीं जाते। खास तौर पे अगर कोई अंग्रेजी का सवाल आ जाए तो आपने वो देख लिया होगा शॉन टेट के साथ, पाकिस्तानी अगर टीम मैनेजमेंट ने कवर करना है ना, अगर बचना है तो किसी गोरे को भेज दें ताकि आधे से ज्यादा तो हमारे वो रिपोर्टर्स बेचारे सवाल ही नहीं कर सकते। तो मसला तो है ये जेन्युइन।
बिल्कुल यार, एक अच्छा मजे की बात, जलाल आपने देखा होगा जो मीडिया कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होती है, इवन पाकिस्तानियों की भी जो हो रही होती है, उसमें भी कोई उस तरह क्वेश्चन नहीं करता। या तो पता नहीं वो लोग भी, उनको उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछना जहां पे प्लेयर फंस जाए। मैंने नहीं देखा आज तक कोई इस तरह कोई बहुत ही टेक्निकल सवाल किया
यार। तो मेरा एक हाइपोथेसिस है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, कि पाकिस्तान में अब किसी भी फील्ड में आप देख लो ना, मुफ्ते भरे हुए, लोगों के ऐसे ऐसे मुफ्ते लगे हुए हैं कि आप हैरान रह जाओ। इनकॉम्पिटेंस की ना हद है। तो इस वजह से मुझे तो यही लगता है रीजन इनकॉम्पिटेंस है, लोगों को वही बात है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब है ही नहीं कहीं पे पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, मोहम्मद जीशान साहब कहते हैं कि जी एनी प्रेडिक्शंस ऑन टॉप 4 फाइनलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, सेमी फाइनलिस्ट कह रहे हैं, ये क्या है जी उमेर साहब आप बताएं?
जीशान साहब पूछ रहे हैं। अच्छा, टॉप 4 फाइनलिस्ट यार, एक ऑस्ट्रेलिया है, सही है, इंग्लैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड तो हो नहीं सकती, इन दोनों में से दो टीमें होंगी, ऑस्ट्रेलिया होगी इंग्लैंड होगी, ठीक है, थर्ड टीम आपकी इंडिया हो सकती है, सही है, और फोर्थ टीम जो है आपकी
पेट्रियोटिज्म आ रही है इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ ये बंदा अपने पेट्रियोटिज्म को पीने की कोशिश कर रहा है यार,
बिल्कुल सही पकड़ा मैं, पी रहा हूँ बल्कि पीते हुए बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका एक्सपेक्टेड लग रहा है।
शुक्र है भाई शुक्र, देखो चेंज हो गई है। पहले ये बंदा मुझे कह रहा था कि नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, सेमीफाइनल में जाएगा। मेरी भी अभी अभी तो यही लग रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उस ग्रुप से, इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका और इंडिया। बट ये भी डिपेंड करता है कि श्रीलंका की टीम को हल्के में नहीं ले सकते, वेस्ट इंडीज़ की भी इस दफ़ा टीम अच्छी है, तो देखना पड़ेगा कि वो क्वालिफाइंग ग्राउंड से किस ग्रुप में जाती हैं। लेकिन अभी तक यही चार लग रही हैं स्ट्रॉन्ग टीमें।
मतलब कि जलाल पाकिस्तान का कोई सीन नहीं है, मतलब कि हम लोग फिर वीडियो किसके बारे में बनाएंगे यार सेमीफाइनल
यार देखो उन्होंने कहा है ना, डर के आगे जीत है या हार के आगे भी जीत हो सकती है। तो अगर पाकिस्तान देखो बुरी तरह भी जब आप हारते हो ना तो सिस्टम में थोड़ी तब्दीली आती है, शायद वो लॉन्गर टर्म के लिए
हाँ
पाकिस्तान के लिए हार
ये
अच्छी साबित हो जाए। मेरे तो मैं तो कहता हूँ ठीक ही है, डिजर्विंगली अगर आप डिजर्व ही यही करते हो तो फिर यही होगा आपके साथ। क्रिकेट फीवर साहब पूछ रहे हैं आपसे कि योर प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 फॉर ट्राई सीरीज फर्स्ट मैच, अभी से पूछ रहे हैं भाई ये।
यार, इस पे मुझे कोई मेजर चेंज नहीं नजर आ रहा प्लेइंग 11 में। वही होगी जो आपकी इंग्लैंड पे चल के आई है, बाबर रिजवान होंगे और सारे वही, मतलब सारी लाइनअप वही होगी
अच्छा अब
और
शदाब इंजर्ड है,
हाँ वही।
उस्मान इंजर्ड है, दूसरा स्पिनर कौन होगा?
शादाब इंजर्ड है और कौन इंजर्ड है, इफ्तिखार
उस्मान भी
इंजर्ड
इंजर्ड
है
है।
यार। इफ्तिखार के साथ ही जाएगा ये बाबर, जो मैंने माइंडसेट थोड़ा रीड किया है वो यही है कि इफ्तिखार के साथ ही, और ऑप्शन भी कोई नहीं है, लेकिन इफ्तिखार के साथ ही प्रेफरेंस
अच्छा अब
होगी।
यहाँ पे अबरार को नहीं, अबरार नहीं ना गया स्क्वाड के साथ, आई थिंक वो इसी सीरीज
नहीं
के लिए
यार
था,
वो नहीं गया बिल्कुल।
तो अबरार जा सकता था ना, अबरार खेल सकता। आप उस्मान कादिर को घर में बिठा के रखते और आप अबरार को भेज देते, यही
हाँ
तो
कर
चीज समझ
सकते
नहीं ना
थे।
आ रही कि ये इन्होंने प्लानिंग क्या की है भाई, कुछ समझ नहीं आ रही। राबी साहब कह रहे हैं कि यू वॉच टुडे साउथ अफ्रीका इंडिया मैच, फैंटास्टिक साउथ अफ्रीका अफ्रीकन बैटिंग। बिल्कुल सर, अभी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पे हम
बिल्कुल
आगे जाके डिस्कशन करने लगे हैं पूरी सीरीज के मुतालिक। बहुत सारे पॉजिटिव हैं भाई इंडिया के लिए और बहुत सारे पॉजिटिव साउथ अफ्रीका के लिए भी हैं, और कुछ नेगेटिव्स भी हैं दोनों टीमों के लिए, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। उमर साहब जल्दी से ये वाइंड अप करते हैं जो मोहम्मद वसीम साहब का, फिर इंडिया साउथ अफ्रीका पे आते हैं। लास्ट में एक दो पॉइंट्स हैं,
ठीक
कहते हैं कि जी
है
न्यूजीलैंड में सीरीज में वो जो अभी हम बात कर रहे हैं अबरार को लेके जा सकते थे या फलाना, वसीम साहब कहते हैं न्यूजीलैंड की सीरीज में आपको फाइनल शेप हमारी नजर आना शुरू हो जाएगी, क्या
ऐसा
कहते
ही
हैं
है
आप?
यार, वही फाइनल शेप है मेरे ख्याल में जो हम एशिया कप से देख रहे हैं, उस शेप में मुझे कोई चेंजिंग तो ऐसे इतनी नजर नहीं आई, तो बस देखते हैं न्यूजीलैंड में वही बंदे होंगे जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, यही बोला है उन्होंने।
एक इसमें
और
मुझे लग रहा है वो ये
उन्होंने
कह रहे थे कि आपको शायद शदाब और नवाज ऊपर बैटिंग करते दिखाई दें, ये उन्होंने बाय द वे इंग्लैंड वाली सीरीज में भी कहा था, इंग्लैंड वाली सीरीज स्टार्ट होने से पहले कि शदाब शायद आपको ऊपर बैटिंग करते नजर आए। मुझे लगता है वसीम साहब की कोई सुन नहीं रहा।
बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ये बिल्कुल आपने सही बात की, जब उनसे पूछा गया ना प्लेइंग 11 का, क्या आप अपनी प्लेइंग 11 बनाए, अच्छा वो बना ही नहीं रहे थे अपनी प्लेइंग 11 वो बना ही नहीं, वो शायद कंट्रोवर्सी से बच रहे होंगे या कोई कुछ होगी बात, तो वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं बस बाबर रिजवान फेसर होंगे और जो बॉलर्स मेरे होंगे बस वही तीन चार बॉलर्स जो है। हालांकि ये वाले सवाल पे काफी ज्यादा पुश किया था, आपको याद होगा रेहान भाई भी लगे हुए थे, नहीं बताया चले कुछ बता दे, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्होंने इस पे हामी नहीं भरी। लेकिन ये बात आप सही करें कि शादाब और नवाज ही उनकी प्रेफरेंस पे थे ऊपर, वही है।
बिल्कुल अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन वो था,
जी।
आपने देखा होगा वसीम अकरम और वकार यूनिस ने क्रिटिसिज्म किया डायरेक्टेड शायद आजम खान की तरफ या इमाद वसीम वगैरह की तरफ कि भाई पैसे आप जिंदगी में बनाते रहेंगे, आप लोगों की प्रेफरेंस होनी चाहिए नेशनल T20 कप खेलना ताकि आप लोगों को सेलेक्ट किया जा सके। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि अगर आप दुनिया में लीग्स खेलोगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि आप लीग्स को प्रेफरेंस दे रहे हो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से। क्या क्रिकेट चेंज नहीं हो रही? क्या आप अभी भी वही ओल्ड स्कूल मेंटेलिटी में जाओगे जहां पे इंग्लैंड की टीम को हमने देखा है कि वो T20 ब्लास्ट को अगर कंपैरिजन करें IPL की परफॉर्मेंस से तो वो IPL वाले लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी T20 ब्लास्ट से। तो क्या आप क्या कहते हो
बिल्कुल
इस पे, क्या होना
यार,
चाहिए और मोहम्मद वसीम ने क्या
ये
कहा?
बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए कि आपका जो प्लेयर होता है उसको उसके पास मतलब के सारा एक्सपोजर होना चाहिए, काफी फ्रेंचाइजेस खेली हूँ, उसके बाद ही कॉन्फिडेंस भी आता है, सही है उसमें। लेकिन जब मोहम्मद वसीम से पूछा गया कि भाई जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनको आप रोकते हैं या क्या करते हैं, ऐसी कोई पॉलिसीज बनी या नहीं बनी हुई, तो उस पर मोहम्मद वसीम, जो मुझे लगा वो काफी बायस थे कि जौन से प्लेयर्स हैं जिनको हमने, कि जौन से प्लेयर खेलना चाह रहे हैं प्लेइंग 11 में, वो लोग प्रेफर करें डोमेस्टिक ही, ये उनका इस पे था सवाल, इस पे जवाब था। तो
उन्होंने कहा था कि
आप
हम
इस बात
चाहते
से
ये
भी
हैं कि प्लेयर्स प्रेफरेंस दें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, लेकिन जो अब हालात चल रहे हैं, आपको इमरान रमीज़ आजा खुद कहते हैं कि आपको कमर्शियल साइड भी अपने माइंड में रखनी चाहिए। आप प्लेयर्स ऑब्वियसली हर बंदा पैसों को भी देखता है, सिर्फ मुल्क को नहीं देखता। खास तौर पे अगर इमाद वसीम टाइप का प्लेयर है जिसको पता है मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो पैसों को फिर देखेगा ऑब्वियसली। वो बोलेगा यार एटलीस्ट मैं पैसे तो कमाऊं, अगर मुझे सेलेक्ट तो कर नहीं रहे। ठीक
बिल्कुल
है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ
बिल्कुल।
व्यू है जो
और
उनका।
यार हाँ जी बिल्कुल, वैसे भी जलाल आप बाकी भी देखें जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो लोग तो कोई इतना क्रिटिसाइज नहीं करते। अभी आपको याद होगा ट्रेंट बोल्ट ने भी अभी रिसेंटली बात की है कि भाई मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ ज्यादा अपनी वो जाऊंगा उस तरफ।
बिल्कुल।
हार्दिक पांड्या ने भी बोला है यही बात कि मैं छोड़ दूंगा ओडीआई वगैरह। तो मेरे ख्याल में इन चीजों से इतना मैटर नहीं करनी चाहिए, ये बस पाकिस्तान की मैनेजमेंट है या क्या सीन है।
यार इंडिया इंडिया वाले करते हैं, इंडिया वाले अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में आपको इतने ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं
हाँ
कि
पैसे
आप
मिल
प्लेयर्स पे
जाते
ये कर सकते हो कि आप बाकी लीग्स ना खेलने दो उनको। लेकिन वो भी मुझे लगता है फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया थोड़े से कमेंट्स का
हैं।
टाइम, फिर हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पे आते हैं। क्रिकेट
सही है
फीवर
यार।
साहब कहते हैं कि डिड यू सी वसीम एंड वकार यूनिस प्लेइंग 11? बिल्कुल सर, देखी, और उसमें वकार
बिल्कुल
यूनिस ने तो
देखी
शोएब
है।
मलिक को डाला हुआ था, वसीम अकरम ने नहीं डाला हुआ था, तो वही इसमें मेजर फर्क जो मुझे नजर आया। और ओपनर्स तो आई थिंक दोनों के सेम ही थे। गौरव चौधरी साहब भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं क्या आप दोनों को लगता है कि नवाज और शादाब दोनों खेलेंगे वर्ल्ड कप में? मुझे तो बिल्कुल लगता है
यार
सर,
खेलेंगे
अगर शादाब की इंजरी ज्यादा
और
नहीं है तो।
बाकी ये गौरव, इसके बाद इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है पाकिस्तान के पास अगर नवाज और शादाब नहीं खेलेंगे, मतलब फिर किसको खिलाएंगे ये लोग।
हाँ, और ये दोनों स्टार प्लेयर हैं यार, ये दोनों प्लेयर भी तो अच्छे हैं।
हाँ ये ठीक
अच्छा,
किया काफी।
राबी साहब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दे आर प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट, फॉर दैट दे आर बेस्ट। बिल्कुल सर,
डेफिनेटली
देखें
यार, इस पे कोई शक ही नहीं।
इसमें बड़ी सारी चीजें हैं। वो प्रोफेशनल क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, उनका सिस्टम देखें, किस तरीके से उनके अंडर 13, अंडर 14 या स्कूल लेवल या क्लब लेवल क्रिकेट होती है, और उसको अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान में, तो फिर आपको यही लगेगा कि मौजज़ा ही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट चल रही है। ठीक है, तो अभी रमीज़
यार
राजा साहब ने
उनका इतना स्ट्रॉन्ग है डोमेस्टिक, मतलब कि हम लोग जब देख रहे थे वीडियोस वगैरह पे कि उनका जो डेब्यू करता है बंदा वो 30 साल की उम्र में कर रहा है और उसका कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है खेलने का। तो मेरे ख्याल में उनका 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 अच्छा सिस्टम है, काफी काफी उनको सपोर्ट भी है, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट है। ठीक
बिल्कुल
है वो अगर काउंटी खेलते हैं उनको ये टेंशन नहीं होती कि यार अगर मैं अभी इंजर्ड हो गया निकल गया तो पीछे घर कौन चलाएगा, ये सब इश्यूज तो मतलब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, तो मेरे ख्याल में टाइम लगेगा इस चीज को काफी इम्प्रूव होने में, आराम से नहीं होगी।
हाँ, कोशिश तो करें। अभी रमीज राजा साहब ने बैंक अल्फला के साथ कोई स्कूल क्रिकेट का इनिशिएटिव भी लिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जूनियर प्रीमियर लीग एक अच्छा इनिशिएटिव है, दुनिया वाले चाहे जो मर्जी बोलें, क्रिकेट अब बदल रही है, और शायद आपको 10 साल बाद T20 क्रिकेट ही नज़र आएगी, वनडे क्रिकेट आपको नज़र, 50 ओवर्स वाली सिर्फ वर्ल्ड कप की हद तक ही नज़र आएगी। तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक जगह हम कहते हैं हमें डायनेमिक क्रिकेटर्स चाहिए, फिर हम उसी जगह हम क्रिटिसाइज करते हैं कि जी हम जूनियर प्रीमियर लीग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो समझ नहीं
बिल्कुल
आती
सही
कि
बात
चाहते
है।
क्या है भाई। अच्छा जी, उमेर
चले
साहब,
जी फिर इंडिया वाले मैच पे आ जाए,
इंडिया वाले
इंडिया और
मैच पे
साउथ
आ
अफ्रीका।
जाएं,
आपने तो
सीरीज तो जीत गया इंडिया।
आपने तो सीरीज जीत गई है बिल्कुल, आपने तो बल्कि देखा भी है काफी आज का मैच काफी डिटेल में।
बिल्कुल
तो बताएं जरा क्या तासरात हैं भाई, पहले साउथ अफ्रीका का बताएं कि उनके बारे में क्या ख्याल आते हैं, फिर इंडिया की बैटिंग का बताएं।
यार, देखो जो मैच टीम सिलेक्शन थी उससे तो क्लियरली एविडेंट था कि इंडिया ट्राई आउट कर रहा है प्लेयर्स को, और इंडिया टाइम देना चाह रहा है उन प्लेयर्स को, क्योंकि एक पहले तो बात है, एक बैटर कम से खेल रहा था इंडिया। ठीक है, ज़्यादा उन्होंने पेसर खिलाए और ट्राई आउट कर रहे थे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वो तो इस वजह से गिवन था कि थोड़ा सा इंडिया डिसएडवांटेज पे है। लेकिन तारीफ करनी होगी राइली रॉसो की कि भाई उससे पहले दो मैचों में परफॉर्मेंस नहीं आई और फिर उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब ग्राउंड बहुत छोटा था, मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडिया में क्यों इतने छोटे ग्राउंड्स हैं, खास तौर पे जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप की। पॉइंट थर्ड मैन की बाउंड्री उमेर साहब 55 मीटर की थी, ठीक है।
वो
तो
तो बॉल इतनी तेज होगी, चली गई होगी
हाँ,
छक्के
बा
में।
एच बी लगे तो 6 हो रहा था, और साउथ अफ्रीका की इनिंग्स अगर आप देखो ना तो ज्यादा छक्के थे कम चौके थे ओवरऑल। तो एक चीज
अच्छा
मुझे अच्छी
सही।
लगी, राइली रोसो तो एक्सेप्शनल थे, खास तौर पे वंडर डूसन की जो वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं उसके
कमी
बाद राइली रोसो और डेविड मिलर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि वंडर डूसन एक बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर, वो बहुत बड़ा ब्लो था। क्विंटन डिकॉक लास्ट मैच में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि जी स्ट्राइक रेट थोड़ी लो है, क्योंकि आप उन्होंने सॉरी भी की डेविड मिलर से कि भाई मेरे से तेज नहीं खेला गया इस मैच में, आपको वो थोड़ी ज्यादा इंटेंट नजर आई। मार्करम कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, तो इनकी सेटल्ड साइड तो बहुत ज्यादा लग रही है। उमेर साहब बैटिंग भी सेटल लग रही है, बॉलिंग भी लग रही है,
हाँ
मसला है ऊपर बबूमा भाई का, आपके प्यारे बबूमा भाई का
बिल्कुल
है। अब
बिल्कुल
क्या
नहीं,
होगा
बिल्कुल
बबूमा
नहीं,
का
नहीं
ये
मुझे
बताओ ना
पता
मुझे।
है यार। बूमा का मेरा नहीं ख्याल, अभी कुछ होगा, जो होगा वर्ल्ड कप के बाद ही हो सकेगा, क्या ख्याल है? क्योंकि अभी टाइम कम है, और मेरे ख्याल में जब वर्ल्ड कप के बाद आएंगे तो जिस तरह आप कह रहे थे, हैंड्रिक्स काफी ज्यादा वो एक अच्छा टैलेंट है टॉप ऑर्डर पे, हमने देखा भी, पीछे एविडेंस भी था उसका। तो अगर बोमा परफॉर्म नहीं करते तो काफी ज्यादा एक उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि इसका इस पे भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ है साउथ अफ्रीका में भी, कि मकाया निटिनी ने किए, आप बता रहे थे, बात हो रही थी
हाँ
आपसे, तो वो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन वही बात है कि अभी टाइम बड़ा शॉर्ट है, इसको इस तरह निकाल नहीं सकते, क्या
यार, लेकिन एक
ख्याल है?
चीज है जो मुझे साउथ अफ्रीकन लोगों से चैट करके पता लगी और जो मैं उनकी देख रहा हूँ चैनल्स पर, फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ साउथ अफ्रीका। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऐसे हद तक जा सकते हैं कि वो बबूमा को चेंज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि पोटेंशियली उनको लग रहा है कि हम इस टीम से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है बबूमा की होने की वजह से हम हमारा वर्ल्ड कप ना लग जाए। तो ये वाली फीलिंग जो है ना वो साउथ अफ्रीका में प्रिवेल करती जा रही है, और उस पर प्रेशर सबसे ज्यादा ये पड़ गया कि आप अपनी साउथ अफ्रीका की T20 टूर्नामेंट की जो लीग हो रही है उसमें बबूमा को किसी टीम ने बिड ही नहीं किया, तो
रखा ही नहीं।
आपका कप्तान है वो सिर्फ इस वजह से खेल रहा है टीम में इस टाइम के ऊपर कि वो कप्तान है। सही है। ये टाइम आपको देखो मॉर्गन पे भी आया था, लेकिन मॉर्गन के पीछे इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस थी कि वो थोड़ा लंबा सा चल गया, लेकिन मॉर्गन भी सरवाइव नहीं कर सका, उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ गई T20 से भी और फिर आगे वनडे वगैरह से भी। तो मुझे लग रहा है बबूमा के टाइम बड़ा जो है ना काम खराब है बबूमा का। सबसे बड़ा जो नेगेटिव है अपार्ट फ्रॉम वंडर डूसन का वर्ल्ड कप से बाहर होना, मुझे लगता है वो बबूमा का नेगेटिव है, और उसकी वजह से हो रहा है कि रीजा हेंड्रिक्स को चांस नहीं मिल रहा ना क्लासन को चांस मिल रहा है, ठीक है। तो वो दोनों
क्लासन,
प्लेयर्स अनटेस्टेड जा रहे हैं। ओवरऑल साउथ अफ्रीका में मुझे लगता है कि बड़ी खुश जाएगी उमेर साहब, क्योंकि कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ नजर आ रहा है, यूथ प्लस एक्सपीरियंस, तो पक्की टीम लग रही है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। शम्सी महाराज दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पेस तो उनकी अच्छी है ही, थोड़ा सा पेस में कॉम्बिनेशन का उन्हें समझ नहीं आ रही कि नौरकिया को कहाँ फिट करें, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उस्ताद इंडिया का बैटिंग तो बॉम्बास्टिक हो गई है एशिया कप के बाद। एशिया कप के
बिल्कुल
बाद
यार,
हर कोई स्कोर कर रहा
यार बिल्कुल। आप अगर साउथ अफ्रीका डेविड मिलर का स्टैट्स देखें तो बहुत ही कमाल के स्टैट्स हैं।
है।
मैं आपको बताता हूँ, T20 इसने खेले 107, सही है, जिसमें इनिंग्स इसकी 93 है, 2000+ स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर 106 है, एवरेज इसकी 33 की है, ठीक है। और अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे फेसर नहीं है, ये
बिल्कुल
नीचे आता है। स्ट्राइक रेट इसका 145 का है, ठीक है, 100 छक्के और इसके चौके 136 है। मतलब यार ये बहुत ही कमाल का ये प्लेयर है,
बहुत यार,
मतलब लेवल है इस बंदा, बहुत कमाल है।
और इसका
और
नाम
ये
आप उस
अगर
तरह नहीं
ऑस्ट्रेलिया में
सुनते
खेलता,
जिस तरह सुनना चाहिए, क्योंकि
हाँ बिल्कुल
हाइप नहीं
बिल्कुल,
बनती ना,
हाँ
ना
हाइप नहीं बनती।
ना ये इंडिया की टीम का प्लेयर है, ना ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, ना ये इंग्लैंड का प्लेयर है। तो इन तीन टीमों के प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म करें तो ऑब्वियसली मीडिया टेंशन ज़्यादा होती है। डेविड मिलर अंडर द रेडार, खासतौर पे लास्ट 2 सालों में तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है डेविड मिलर की। ठीक है, शुरू में हम कहते थे कि यार ये 25-30 रन अच्छे करते हैं लेकिन फिर फिनिश नहीं कर पाते, अब मिलर ने आईपीएल में भी अच्छा खेला है और फिनिश करना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कैप्टेंसी भी मिलर की बनती है असली तौर पे।
यार जिस तरह कह रहे हैं आप, वो बोमा अगर निकलेगा तो फिर सीन बन सकता है डेविड मिलर का। डेविड मिलर ये आई थिंक पीएसएल में भी खेला है, पिशावर जलमी की तरफ से, है
हाँ आई थिंक सो।
ना? तो बड़ा यार अच्छा टैलेंट है। वही बात है कि वैसे भी यार साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि उनके फेवरेबल है पिचेस, तो काफी ज्यादा चांसेस बन सकते हैं साउथ अफ्रीका के।
बिल्कुल,
बिल्कुल
देखो साउथ अफ्रीका के पॉजिटिव्स तो हो गए, काफी हद तक पॉजिटिव्स ही हैं, सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो बवुमा का ही है और वंडर डूसन की बाहर होना। अगर इंडिया की बात करूं मैं साहब, तो बैटिंग तो क्लिक कर रही है, हमने देखा केएल राहुल स्ट्रगल कर रहे थे एशिया कप में, साउथ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट यहाँ पर फ्लुएंट नजर आए ठीक है इस सीरीज में, और अच्छी उन्होंने
बिल्कुल
परफॉर्मेंस दी। सूर्या कुमार यादव तो किसी और प्लेनेट पे खेल रहे हैं, दिनेश
वो
कार्तिक की आज की इनिंग्स
तो कमाल
मतलब समझ नहीं आया वो शॉट क्यों खेला
कमाल
उन्होंने,
की।
मतलब इतना अच्छी बैटिंग जब कर रहे थे तो वो अजीब सी शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। पंत भी आज थोड़े से टच में
कमाल।
लगे, ओपनिंग कर रहे थे, तो देखो इंडिया ट्राई कर रहा है कि शायद उनको लग रहा है पंत मेन 11 में फिट नहीं हो रहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन केस अगर केएल राहुल नहीं परफॉर्म कर पाते तो बैकएंड पे पंत एज एन ओपनर पड़ा हुआ है। अच्छा इधर एक कमेंट ले लेते हैं,
सही है, आप
गौरव साहब
कमेंट करते
कहते
हैं मैं
हैं
आपको
इंडिया
जवाब
छोटे
दूंगा।
ग्राउंड में खेल रहा है ताकि सब टीम बॉलिंग कमजोर समझ के सिक्स मारने जाए और लंबी बाउंड्री पर आउट हो जाए। ये भी ठीक है।
वही, ये तो जब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया ना, पाकिस्तान और इंडिया, उनको उनको वहां जाके पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी कराची की पिचेस छोटी थी थोड़ी, तो देखते हैं वहां जाके क्या करते हैं।
अच्छा ये विकास साहब का कमेंट लंबा है, ये जरा पढ़ें।
जी, मैं पढ़ लेता हूँ। ये कह रहे हैं साउथ अफ्रीका हमेशा अच्छा खेलता है बट वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पाता है, और मे भी इस बार साउथ अफ्रीका जीत जाए, वर्ल्ड T20 जीत जाएगा, जीत जाएगा। यार ये बात तो आपकी बिल्कुल जेन्युइन है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में हमेशा प्रेशर में आ जाता है। मुझे तो याद है 2003 से, मुझे याद है साउथ अफ्रीका की टीम मोस्ट फेवरेट होती थी। 2007 में फाइनल में आए, ठीक है, फिर पिछले वर्ल्ड कप में 2000 आई थिंक वो 2015 का था, न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल, तो वो भी जिस तरह सेमीफाइनल ये लोग हारे, वो भी बड़ा अजीब तरीके से हारे, प्रेशर गेम लग रही थी, फुल प्रेशर लिया हुआ था इन्होंने, तो अल्लाह करे कुछ
यार
इस बार
अगर
सीन
आप
बने।
92 के वर्ल्ड कप से देखो ना, तो 92 में भी साउथ अफ्रीका जिस लिहाज से खेल रहा था ना, वो वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका लेके जा सकता था। वो तो अजीब ही उनके साथ
बहुत
बारिश वाला
ट्रेजेडी
जो
हो गई
सीन हो
थी।
गया, फिर 99 वाला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वॉज फेवरेट अलॉन्ग विद पाकिस्तान ठीक है, तो वो भी एक मैच सेमीफाइनल में जो वो रनआउट वाला सीन हो गया, वो तो तारीख याद रखेगी जब तक क्रिकेट की हिस्ट्री है, वो एनल डोनाल्ड का वो रनआउट याद रहेगा सबको। 2003 में भी बारिश से बाहर हो गए, 2007 में भी बाहर हो गए, तो बेचारों के साथ समझ नहीं आती, नहुसत है कोई।
हालांकि टीम इनकी बहुत इनकी टीम बहुत अच्छी होती है
बहुत
यार,
अच्छी होती है
ये
यार।
सारे वर्ल्ड कप्स में बॉलर कमाल के बॉलर्स, बैट्समैन कमाल के, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप देखें हमारे स्क्वाड में तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड भी वर्ल्ड कप में देखा जाए पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ा अच्छा ही है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। पाकिस्तान शायद टफ टाइम दे दे साउथ अफ्रीका को थोड़ा।
अच्छा गौरव साहब ने एक कमेंट किया है, जरा पढ़ें।
भाई ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग सबकी अच्छी होगी पर जीतेगा वो टीम जिसकी बैटिंग क्लिक करेगी। यार बात तो आप सही कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम की बैटिंग क्लिक करेगी।
ये इंडिया के चांसेस बढ़ा रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है। ये इंडिया की चांसेस
मुझे
बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं ये हाइप क्रिएट करें जरा इंडिया की, कि इंडिया की बैटिंग क्लिक कर रही है, और नो डाउट यार इंडिया की बैटिंग अच्छी है, लेकिन मैं वही पॉजिटिव्स और नेगेटिव में आते आते वो फिर बीच में रह जाते हैं। बैटिंग तो इंडिया की क्लिक कर रही है, सारे
बैटिंग
बैटर्स
बॉलिंग
फॉर्म में
में
नजर आ रहे हैं, बॉलर्स बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया अगर 210 का टारगेट भी लगाती है ना तो वो सेफ नहीं लगता आपको। सही है, तो खास तौर पे बुमराह का जो लॉस हुआ है उसके बाद, देखो आज सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, डेथ में सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, पेस के साथ की, 146 तक जा रहा था, लेकिन चाहर बैटिंग में अच्छे कर गए, लेकिन बॉलिंग में जो है वो उनका नजर आ गया कि डेथ में उनको मार पड़ सकती है। तो अब समझ नहीं आ रहा इंडिया किसके साथ जाएगा, सिराज चाहर या शामी इन प्लेस ऑफ बुमराह। तो गौरव साहब बताएं ना आप कि कौन सा आपको लगता है सही रिप्लेसमेंट होगी।
अच्छा यार, मेरे ख्याल में शामी, हुई हमने जैसे कल भी बात की थी कि शामी होना चाहिए आइडियली। मैं तो खैर शामी का ही बोलूंगा, मतलब अच्छा बॉलर है, मेच्योर बॉलर है, एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छा कॉम्बो बना देगा।
यार अब शामी का एक मसला वही जिस तरह हम शाहीन का कह रहे हैं, गेम टाइम ही नहीं है, मतलब मैच ही नहीं है उसने खेले हुए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो डायरेक्टली आके? वो तो शाहीन तो फिर चलो इस साल मैच खेला हुआ है, शामी साहब तो नजर ही कोई नहीं आए, तो वो तो बिल्कुल ही आउट हैं। फिर कोविड हो गया और अभी वो नेट में ही बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है अपनी, मेरा ख्याल है वो नेट में कर रहे हैं। अब सिराज को इन्होंने खिलाया है, वो पेस के साथ बॉलिंग भी की है, उसने यॉर्कर्स भी मारे हैं, ये अलग बात है, फील्डिंग तारीख ही कर दी एक कैच ड्रॉप किए मेरे ख्याल है रोसो का, और फिर एंड में डेविड मिलर का छक्का करा दिया, वो भी कैच था। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की फील्डिंग, हालांकि इंडिया की फील्डिंग जनरली पाकिस्तान से बेहतर होती है, फील्डिंग जरा कैचिंग के हद तक बड़ा कंसर्न है यार इंडिया और पाकिस्तान का। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, इंडिया की बॉलिंग बहुत पिटी पर साउथ अफ्रीका की भी पिटेगी। बिल्कुल सर, T20 में तो पिटेगी, बट अगर आप बॉलर टू बॉलर कंपैरिजन करें ना साउथ अफ्रीका का, तो रबाडा है आपका, नॉर्किया है, ठीक है, एनगिदी चलो वो आप कह सकते हो कि थोड़ी उसको मार पड़ जाती है लेकिन वो विकेट ले जाता है, पार्नेल वो ऑप्शन है उनके पास, फिर महाराज अच्छी बॉलिंग करता है, तबरेज शमसी अच्छी बॉलिंग करता है, तो पूरी बॉलिंग है, फिर प्रिटोरियस वगैरह भी हैं उनके पास अगर वो खिलाना चाहें तो।
प्रिटोरियस ने यार उसने काफी अच्छी बॉलिंग कराई आज, तीन विकेट लिए उसने।
अच्छा एक आज मुझे थोड़ा सा उमेर साहब टेक्निकली अगर आप देखो ना, जो मुझे लगा थोड़ा सा सूर्या कुमार को पकड़ा है साउथ अफ्रीका ने, पहली दफा मुझे लगा सूर्या कुमार को थोड़ा सा पकड़ा है। अब वो क्या किया उन्होंने, सूर्या कुमार आए एज यूजुअल, उन्होंने पीछे छक्का मार दिया फाइन लेग पे, जो जिस तरह वो मुड़ के मारते हैं छक्का, ठीक है। प्रिटोरियस आए, प्रिटोरियस ने ना स्लो डिलीवरियां करानी शुरू की आउटसाइड ऑफ स्टंप, बिल्कुल वो वाइड लाइन के करीब, पहले उन्होंने तेज फेंकी एक दो वाइडें गई, फिर उन्होंने स्लोअर वन फेंकी और सूर्या कुमार ने रीच आउट किया, क्योंकि वो फुट मूवमेंट उतनी ज्यादा नहीं करते नॉर्मली, ठीक है, तो वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेल गए और क्या कैच पकड़ा है स्टब्स ने यार, वो कैच देखने वाला है।
अच्छा मैं बिल्कुल देखूंगा, मैंने वैसे वो नहीं देखी विकेट।
हाँ
नहीं तो जो तो वो जिस बॉल पे आउट है वो बॉल स्लो थी,
वो बॉल स्लो थी और वो आउटसाइड ऑफ स्टंप थी और उसको सूर्या कुमार यादव रीच आउट करने जा रहे थे और वो क्योंकि फुट बहुत दूर था बल्ले से तो वो हवा में चल गई। तो वो एक लगता है कि शायद टीमें उनको टारगेट करेंगी स्पेशली जहां पे ग्राउंड बड़े हैं, तो वो एक चीज देखना पड़ेगा।
देखते हैं अभी तो इनका यार 50। खैर उस पे आने से पहले जलाल एक बात बस बोलूंगा इस पे, जो T20 स्क्वाड है इंडिया का, यार ये चीज तो माननी पड़ेगी इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स है, ठीक है, जैसे राहुल की बात अगर हम करते हैं तो वो उसने अपने आप को काफी इंप्रूव किया है, मतलब कि ना उस पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई आप उस तरह नहीं, कि इंटेंट आपका शो नहीं हो रहा, आप वो माइंडसेट को जो कि मतलब जो माइंडसेट है उसको अडॉप्ट करो, एग्रेसिव हो। तो मेरे ख्याल में राहुल ने काफी ज्यादा इस चीज को इम्प्रूव किया है इन्हीं 2-3 सीरीज में पिछली, हालांकि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म था। तो ये वाली डायनेमिक्स जो होती है, डायनेमिकली जो चेंज होता है पर्सनैलिटी में, जो कि इतने मैचेस खेल चुके हों, पाकिस्तान में ये चीज हमें इतनी नजर नहीं आती, क्या ख्याल है
यार? दोनों में सिमिलर ही आई गेस। देखो राहुल नो डाउट, राहुल पे क्रिटिसिज्म क्या होता है, एबिलिटी पे तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता ना, राहुल का सबको पता है कि वो जिस दिन खेलेगा उस दिन वो आउटक्लास खेलेगा, लेकिन वो बड़े मैच में डिलीवर नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है, तो वो अब देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आ रहा है वो राहुल के लिए भी बेस्ट टेस्ट केस होगा और सूर्या कुमार यादव के लिए बेस्ट टेस्ट केस होगा, क्योंकि सूर्या कुमार यादव पे भी कहीं ना कहीं वो पॉइंट आता है कि बड़े मैच में वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके अभी तक, तो इन दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इंडिया पाकिस्तान को हरा देती इस वर्ल्ड कप में और ये दोनों अच्छा खेलते हैं तो मेरा ख्याल है फिर इंडिया वर्ल्ड कप में एक बड़ा एक फेवरेट के तौर पे जाएगी आगे। अच्छा कमेंट लेते हैं, क्रिकेट फीवर साहब याद करा रहे हैं कि लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल से बाहर नेट रन रेट की वजह से हुआ था, बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा खेले थे टूर्नामेंट, इवन दो लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका को इतना फेवरेट कंसिडर नहीं हो रहा किया जा रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छा खेले थे, बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा
गौरव भाई कह रहे हैं नहीं भाई मैं इंडिया के चांस नहीं बढ़ा रहा, ऑस्ट्रेलिया के बढ़ा रहा हूँ। हम कह रहे थे ना इनको कि लगता है आप इंडिया के चांसेस बढ़ा रहे हैं, कहा नहीं इंडिया के नहीं भाई, बात तो सही है, ऑस्ट्रेलिया के तो वैसे ही इतने चांसेस बढ़े हुए हैं भाई, मैथ्यू वेड, किम डेविड, तो उनका तो बहुत लेवल हो गया है। अच्छा
अगर
फिर
आप
कह रहे हैं कि शमी आएगा तो
बैलेंस की
उसके,
बात करो उमेर, तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग वाइज बैलेंस की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ अफ्रीका, देन इंग्लैंड, आई थिंक ये वो तीन टीमें हैं जिनकी बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग में आपको तीनों चीजों में नजर आ रहा है कि बैलेंस है। उसके बाद आप इंडिया को रखते हो क्योंकि बॉलिंग में काफी
उसमें
गैप है
बिल्कुल
बैटिंग से।
बराबर यार। मैं वैसे न्यूजीलैंड का भी सोच रहा हूँ जलाल, कि न्यूजीलैंड के पास भी तो स्ट्रेंथ है, बॉलर्स की स्ट्रेंथ है, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स चलेंगे, न्यूजीलैंड के पास स्टेट ऑफ द आर्ट फास्ट बॉलर्स है। बैटिंग में अगर बात करें, बैटिंग में इनके पास निशाम आ जाएगा,
कॉनवे
बैटिंग में थोड़ा लैक करेगा, कॉनवे बिल्कुल वो आ
यार
जाएगा,
वो
विलियमसन
लैक नहीं करते,
उसके
उनका
बाद।
नाम नहीं बनता उस तरीके से। मतलब आप जब भी कोई इमेजिन करते हो ना क्रिकेट में, तो वो न्यूजीलैंड आपकी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वो दो टीमें, या वेस्ट इंडीज को भी कर लो, जो आप फेवरेट्स नहीं कंसिडर करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्पेशली बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब आप पूरे साल देखोगे तो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा होगा, लेकिन सडनली वर्ल्ड कप में वो आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान एक्सेप्शनल कोई मैच जीत गया। तो ये दोनों टीमें
बिल्कुल
फिर उसी
ऐसे
तरह
ही
ही
ठीक
आती हैं।
हो गया। अच्छा गौरव भाई का फिर आखिरी कमेंट ले ले, फिर उस पर चलते हैं, जो 50 ओवर्स अभी आने वाले हैं उस पर थोड़ी डिस्कशन
गौरव
करते
साहब कहते हैं शामी आएगा क्योंकि चाहर, अर्शदीप, भुवी तीनों एक जैसे हैं। अच्छा गौरव साहब,
हैं।
सिराज के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा
सिराज
भाई
एक्सपेंसिव रहा है मेरे ख्याल में आज काफी।
ये भी डरा रहे हैं। देखो गौरव साहब कह रहे हैं भाई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के सामने रोहित, केएल, कोहली, सूर्या, डीके, पांड्या सारे होंगे। हैं
क्या बात है भाई, क्या
बात तो
बात
की है
है।
आपने लेवल
वैसे
की।
यार पांड्या, पांड्या जिस फॉर्म में आया हुआ है ना इस टाइम, मेरे ख्याल में वो एक बहुत ही पीक पे, उस तरह की पीक किसी की नहीं है इस टाइम पे।
बिल्कुल यार,
आईपीएल
नाम
में भी
देखो
तो
तो,
आया
नाम
हुआ
देख
अभी।
के तो वाकई आपको एक दफा दिल को पहुंचता है कि केएल, अगर फॉर एग्जांपल मैं, आप बॉलिंग टीम हो आप, और आप देखो रोहित, केएल, इनको आउट करूंगा, कोहली आ जाएगा, कोहली को आउट करूंगा, सूर्या, फिर डीके, पांड्या,
शुक्रिया।
तो टेंशन तो होती है।
सही बात है, बिल्कुल यार सही बात है।
बिल्कुल सर, श्रीलंका और
अच्छा आप
न्यूजीलैंड
जलाल सर,
का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में हमेशा अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है।
जलाल सर मुझे ये बताया, देखिए 20 ओवर्स की सीरीज तो खत्म हो गई इंडिया साउथ अफ्रीका की, इंडिया जीत भी गया उसमें, प्लेयर ऑफ द सीरीज स्काई बन गया, और अभी आ रही है 50 ओवर्स की सीरीज। तो पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि देखिए 20 ओवरों के बाद जा रही है 50 ओवर्स पे, ठीक है, और हम देख रहे हैं अगले हफ्ते वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा माइंड में
हाँ
फर्क आएगा इनके, थोड़ी इनकी स्ट्रेटजीज वगैरह, या क्या इनकी टीम चेंज होगी, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं?
यार देखो, मेरा ख्याल है इंडिया तो ऑलमोस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट टीम के साथ जा रहा है। थोड़े से दो चार प्लेयर्स हैं जो T20 वाले वनडे खेल रहे हैं, शायद अक्षर पटेल वगैरह खेल रहे हैं, सिराज, लेकिन बाकी तो धवन कैप्टन है और वो सारे उनको खिला रहे हैं, ईशान किशन वगैरह, शुभमन गिल, संजू सैमसन वगैरह सारे वो आ रहे
अच्छा
हैं।
गिल भी है।
तो हाँ, तो वो तो बिल्कुल अलग टीम के साथ खेल रहे हैं, और ये वाली इंडिया की जो मेजोरिटी टीम है ये तो ऑस्ट्रेलिया जा रही है फ्लाइट पर, ठीक है, तो वो तो इंडिया को तो मसला नहीं होगा। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ T20 टीम वनडे में भी उतार दी उन्होंने, ठीक है, तो ये सारे लड़के उधर भी खेल रहे हैं, तो वो एक चीज है, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को थोड़ी
चलो
प्रॉब्लम
यार
हो
ये तो
सकती
अच्छी
है।
बात है वैसे।
साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उमेर साहब ये देखो ना, इंडिया वो वाहिद टीम लग रही है इस टाइम के ऊपर, या वाहिद तो नहीं कहना चाहिए, उन चंद टीमों में से लगती है जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से करते हुए नजर आ रहे हैं। सही, हमने पिछली भी सीरीजेस में देखा कि आपको वो एक धावन गिल का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, और बाकी संजू सैमसन की तैयारी हो रही है, और ईशान किशन की तैयारी हो रही है, और कुछ बॉलर्स की भी
एग्जाम्पल
तैयारी हो
मैं,
रही है।
आप बॉलिंग टीम हो आप, और आप देखो रोहित,
ये
केएल, इनको
पीछे
आउट
से आपकी
करूंगा,
आवाज आ रही है
कोहली,
उमेर साहब की, अगर आप वो बंद कर दें, ये आवाज रिपीट हो रही है आई थिंक।
तो टेंशन तो होती है।
अच्छा गौरव साहब क्या कहते हैं, श्रीलंका न्यूजीलैंड। अच्छा गौरव साहब कहते हैं
आवाज
सिराज
आ रही है
भी
आपको?
आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ जी आपको अब आ रही है आवाज? उमेर साहब को आवाज नहीं आ रही। चलिए उमेर साहब जब तक सॉर्ट आउट करते हैं, मैं वही बता रहा था कि इंडिया वो उन चंद टीमों में से है जो कि आपका 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, बाकी टीमें बहुत ज्यादा पीछे हैं उसमें। अच्छा गौरव साहब क्या कहते हैं, इंडिया का कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है 50 ओवर में जो T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा। अच्छा ये बताएं गौरव साहब कि ये अक्षर पटेल वगैरह नहीं खेल रहे? मुझे भी जरा डबल चेक करने दें यहाँ पर कि इंडिया का स्क्वाड क्या है। सीरीज अगर देखते हैं उमेर साहब, आवाज आ रही है?
यार, आवाज आ रही है आपको? क्या
बिल्कुल आ रही है। अच्छा ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया
कह
है।
रहे हैं?
हाँ अक्षय पटेल नहीं है, देखो इन्होंने बताया है गौरव साहब ने कि जो स्क्वाड खेल रहा है ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे में, उसमें इंडिया की टीम में कोई भी वो प्लेयर
हाँ
नहीं है जो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। सही है,
ओए
तो दो ही प्लेयर हो सकते हैं मतलब
यार, ये बड़ी
देखो।
अच्छी बात है ना,
हाँ बात तो
बड़ी अच्छी
अच्छी है।
बात है ये, है ना?
दीपक
मतलब आप
चाहर
ये
और
देखिए
मोहम्मद
कि
सिराज हैं वो दो प्लेयर्स जो शायद आप कंसिडरेशन में कह सकते हो बुमराह की रिप्लेसमेंट में, बाकी सारी नई टीम है यार। ये तो बहुत बड़ी
यार,
लेजेंडरी
मतलब
बात
आप
हो गई
ये
है।
देखें कि इंडिया इंडिया ने फिर लेवल मार दिया ना इधर।
बिल्कुल मार
मतलब
दिया।
आप देखें, उनके पास, मतलब आप समझो उनके पास एक तरह से टीम भी ही है जो कि खेल रही है।
तैयार है भाई,
वो
पूरी
टीम
टीम
भी अभी
तैयार
ऐसी
है।
वैसी नहीं है। शबमैन गिल लेवल का बंदा है भाई, वो बड़ा टफ था। खैर, अच्छा, अच्छी बात है यार। ये वाली स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हर टीम को अडॉप्ट करनी चाहिए। क्या कहते हैं आप?
बिल्कुल।
स्क्वाड देख लेते हैं यार,
नहीं
साउथ
ये स्क्वाड में
अफ्रीका।
मुझे ऑलराउंडर्स बड़े नजर आ रहे हैं। अच्छा कुलदीप यादव भी हैं।
गायकवाड़ आ गया भाई, गायकवाड़ आ गया। आप, ये आपको याद है हमने इस पे काफी बात की थी,
बिल्कुल बिल्कुल।
गायकवाड़ यार आना चाहिए इसको।
राजत
शान
साहब भी आ गए
शान
हैं,
राजत
बिश्नोई,
साहब
संजू
आ गए,
सैमसन, शहबाज
बिश्नोई।
अहमद। बिल्कुल सर आप
अच्छा, ये
ठीक
तो
कह रहे
इंजर्ड
हैं कि
भी है।
अक्षर नहीं खेल रहा। बिल्कुल मैंने चेक कर लिया है, मैं समझ रहा था अक्षर खेल रहा है, लेकिन गुड यार। मतलब ये देखो अब इंडिया का क्लियरली नजर आ रहा है कि वो नेक्स्ट 50 ओवर्स की वर्ल्ड कप की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से, उनको प्लेयर्स नजर आ जाएंगे। बाकी कोई और टीम मुझे नहीं लगता इस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रही है, और हम भी देखते हैं तो
बिल्कुल
हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते।
बिल्कुल। अब आप देखें ना, मेरे सामने स्क्वाड खोला हुआ है साउथ अफ्रीका का भी, साथ ना दोनों का साइड बाय साइड आ रहे हैं। उनका कैप्टन बावुमा है, फिर आपका डिकॉक है, हेंड्रिक्स आ गया, सही है, क्लासन है, महाराज है, मालान है, ये मार्करम है, डेविड मिलर है, एनजीडी है, नॉर्जे है, पार्टनर, फिर प्रिटोरियस है, रबदा है, शमसी है। हाँ
और पहलुक वायो हुआ है। अच्छा ये जो प्लेयर्स हैं आप देखो ये सारे वो वाले हैं ऑलमोस्ट, जाने मन मलान के अलावा आई थिंक, जो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी हैं। तो क्लियरली
बिल्कुल
नजर आ रही है दो एक अलग अलग चीजें हैं। तो आपका पॉइंट ठीक है
बिल्कुल
कि
सही बात है।
इंडिया को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस सीरीज से, वनडे वाली सीरीज से, लेकिन साउथ अफ्रीका को पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को जरूर पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो
गौरव साहब
मेरे
कह रहे हैं
ख्याल में आज
स्टैंड
के
बाय
सारे
प्लेयर
टॉपिक्स,
चाहर और रवि, रवि बिश्नोई, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में आई थिंक एज अ स्टैंड बाय हैं, वो खेलेंगे।
यार रावी बिश्नोई के साथ जाती है यार, उसको लेके आते हैं ना ये लोग, काफी टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। ग्रूम हो जाए ना, ये बहुत अच्छा बॉलर बन सकता
नहीं नहीं यार ये मुझे तो बड़ा पसंद आया, इंडिया ने ये जो किया है ना वो, जिस तरह क्या नाम है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए वाला जो चक्कर है ना यहाँ पर हो गया, आप मुझे बहुत पसंद
सकता
आए।
है। सही बात है बिल्कुल यार।
चले उमेर साहब मेरा ख्याल है अब हमारा सारा काम तो मुकम्मल हो गया है, पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा सीरीज गई इंडिया
बिल्कुल
की, साउथ अफ्रीका के लिए भी बुरी
बिल्कुल
नहीं गई। इस मैच में पाकिस्तान के लिए भी सबक था जो जिस तरीके से इंडिया का टारगेट था, और इंडिया के इवन एक बैटर कम से खेल रहे थे लेकिन वो इंटेंट के साथ बैटिंग करते रहे करते रहे, उनका आखिरी प्लेयर तक आया तो वो शॉटे मार रहा था और वो कुछ ना कुछ करके 170 से ऊपर टारगेट अपना स्कोर ले गए. और ऑन दी अदर हैंड हमने
बिल्कुल
पाकिस्तान को देखा कि कोई इंटेंट नहीं थी. तो सबक है हमारे लिए भी कि किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए. ठीक है
बिल्कुल
उमेर
ऐसा ही
साहब.
है, अल्लाह करे सबक ले ले। चले यार, ख्याल रखें अपना आप,
ओके
और जो
जी.
जो अभी हमें देख रहा है, जो जो हमें देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन दबा दे, और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, और पॉडकास्ट वगैरह का आप बता दें जलाल।
बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, सबका लिंक है. सारे एपिसोड हमारे www.talkbeforewicket.com पर अवेलेबल हैं ऑडियो फॉर्मेट में, और वीडियो में तो आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं. तो ठीक है जी, अपना सब
चलो
ख्याल रखें. मैं सब,
चले,
आप भी ख्याल रखें. कल का क्या सीन है आपका
ठीक हो
वैसे?
गया। कल का तो ऑफ है, कल का तो ऑफ होगा
कल
बिल्कुल।
का ऑफ सीन है?
आप बताएं। हाँ, अगर आप आते हैं तो आ जाए, अच्छा है, थोड़ा
चलो
कोई
मैं
फिर
देखता हूँ
अपडेट
कल का.
होती है
मैं
कुछ।
ज़रा बता दूंगा ट्विटर और यूट्यूब
हाँ
के ऊपर पहले कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे. सही है,
सही हो गया, फिट हो गया, ठीक
चलो
हो
सही.
गया।
ओके जी, हाफिज़.
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।